awakening to a new way of living.
Om Shanti, Namaste, and good morning. I hope you are all doing good, you are healthy, you are safe, and in high spirits. Friends, today we will discuss about one of the most commonest word. Ek bachcha bhi in shabdon ko use karta hai, and that is stress. We will try to see how to eliminate stress from our life and how to handle or remove this negative emotion called as anger. We will try to bust some myths which revolves around these two words, that is stress and anger. And if I need to tell you, stress kabhi bhi humko bahya jagat se nahi aata hai. Wo hamara ek reality hai. ये हमने एक गलत धारणा अपने जीवन में धारण कर लिया है, या हमने भी एक रॉन्ग परसेप्शन है या एक रॉन्ग बिलीफ सिस्टम है. इट इज बिकॉज ऑफ समबडी, इट इज बिकॉज ऑफ समथिंग, इट इज बिकॉज ऑफ सम सिचुएशन, इट इज बिकॉज ऑफ समथिंग अदर देन मी इज कॉजिंग मी स्ट्रेस एंड एंगर. और यही सबसे बड़ा मैं कहूंगा फ्लॉ है, ये मॉडल ही गलत है जिसके आधार से मैं जीवन को जीने का, खुशहाल वाला जीवन जीने का प्रयास कर रहा हूँ. सो इफ माई ऑब्जेक्टिव ऑफ लाइफ इज टू बी वेरी हैप्पी, बी वेरी सीरीन, बी वेरी पीसफुल, बी वेरी पावरफुल एंड सक्सेसफुल, नाउ इफ आई ऑपरेट माई लाइफ विद दिस फ्लॉड मेंटल मॉडल that whatever is happening around me is a cause of my stress or my pain or my worry or my insecurity or my anger, then believe me, what I'll do with this flawed mental model is I will try to set things right other than me. So if you go by the normal understanding of the causes of stress, number one could be financial issues. हमको जितना धन चाहिए जीवन को जीने के लिए, उसमें थोड़ा ऊपर नीचे होगा तो हमें स्ट्रेस आ जाएगा. नंबर टू इज माय करियर और माय प्रोफेशन. एक करियर का प्रेशर मुझे आ रहा है. आप जो मेडिकल फ्रिटर्निटी के लोग हैं, ये COVID-19 के बाद शायद हमको बहुत ज्यादा स्ट्रेस होने लगा, क्योंकि हमको हॉस्पिटल्स में या फिर अपने कार्य व्यवहार में जाना ही पड़ता था. But then we had to take extra precautions. और वो PPE dress पहन के सारा दिन रहना was a little challenge. Third could be very important, could be relationship. Relationship में could be between spouse, it could be between parent and child, it could be between a boss and a subordinate. वहां पर थोड़ा भी अगर चीजें नहीं ठीक हैं, अगर my spouse is not understanding me, तो फिर हमको stress हो जाता है. Number four could be very important factor for stress could be children or parenting. बच्चों को पाल पोस कर बड़ा करना, क्योंकि आजकल के बच्चे बड़ों की बात थोड़ा कम सुनते हैं. हम उनको कहते हैं कि थोड़ा टीवी कम देखो, थोड़ा अपना हेल्थ का ध्यान रखो, टाइम पर सो, टाइम पर उठो, एंड दे डोंट अंडरस्टैंड, दे डोंट लिसन टू अस. सो दैट causes मी lot ऑफ स्ट्रेस. देन इट कुड बी environment, political changes, policies, business models, jo cheez, coronavirus, baad, tufaan, these are the external factors. Climate change could cause me a lot of stress. Too much to do could be a cause of stress. Hum sabke paas sirf 24 ghante hi hain. Is 24 ghante mein हॉस्पिटल को भी संभालना है, बच्चों को भी संभालना है, खाना भी बनाना है, फ्यूचर को भी देखना है, फिजिकल हेल्थ के लिए एक्सरसाइज भी करना है, मेडिटेशन भी करना है, रिलेटिव्स को भी संभालना है, माता पिता को भी हैंडल करना है, आई मीन सोशल फिनेंशियल पर्सनल फिजिकल यू नो हमारा जो लाइफ है सबको बैलेंस करने के लिए हमारे पास टाइम नहीं है एंड इट इज टेकिंग अ टोल ऑन मी एंड आई एम स्ट्रेस्ड आउट एंड वन ऑफ द रीजंस ऑफ स्ट्रेस कुड बी दैट आई हैव नॉट रीच्ड वेयर आई एम सपोज्ड टू बी. मेरे साथ जिन्होंने MBBS किया या आगे का एजुकेशन किया वो आज कई ऊंचे स्तर पर पहुंच चुके हैं, हम नहीं पहुंच पाए. मेरे साथ जो पढ़े हैं उनका अपना 100-bedded हॉस्पिटल है, मेरा तो अभी भी एक छोटा सा क्लिनिक ही है. सो मे बी आई फील दैट आई एम ट्राइंग टू कंपेयर माई सेल्फ विद अदर्स एंड आई फील दैट आई हैव नॉट रीच्ड वेयर आई एम सपोज टू बी एंड दैट कॉजेस लॉट ऑफ स्ट्रेस. एंड टू टेल यू वेरी क्लियरली फ्रेंड्स, ऑल दिस इज अ फ्लॉड मेंटल मॉडल, गलत धारणाएं हैं. और इसके लिए मुझे लगता है वी हैव टू सेट आवर मेंटल परस्पेक्टिव इन द राइट वे. एंड द राइट मेंटल मॉडल से मुझे टेंशन तब होगा या गुस्सा तब आएगा या स्ट्रेस तब होगा या आई विल फील प्रेशराइज when things are not happening, when the universe is not behaving the way I want it to behave. The universe could include people, could include my future, could be an event, could be a situation or a circumstances. So can I accept and change my mental model with an understanding that there are a lot of things which I cannot control. There are a lot of things which will not happen as per my wish and it is perfectly fine. Aur is mental model ko jo flawed mental model hai isko aur jyada uttejana, isko aur jyada agni, isko aur jyada stressful ek aur karan hai, wo hai ki I have not understood who I am, jisko main dusri bhasha mein kahunga ki the wrong identity. जब हम हमारे ओरिजिनल नेचुरल पर्सनालिटी से हट करके अक्वायर्ड पर्सनालिटी, अक्वायर्ड पोजीशन, अक्वायर्ड रिलीजन, अक्वायर्ड पोस्ट, अक्वायर्ड रिलेशनशिप में अक्वायर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज का जब भार हमारे सिर पर आ जाता है तो देन आई फील ओवरवेल्म्ड एंड आई एम अंडर स्ट्रेस. सो व्हेन आई move and shift myself from that acquired personality, acquired qualities to my original, innate, absolute, intrinsic core personality mein, natural personality mein, natural swabhav mein, natural sanskar mein. वैसे तो example देता हूं, वैसे तो मैं हमेशा शांत रहती हूं, I mean any mother can say that. लेकिन जब बच्चा सुनता नहीं है मैं उसको कहती हूँ बेटा तुम टीवी थोड़ा बंद करो, पढ़ लो, आज सारा दिन तुम टीवी देख रहे थे, आज तुमने कुछ भी पढ़ाई नहीं की. एंड व्हेन द चाइल्ड डजंट लिसन एंड कंटिन्यूज वॉचिंग टीवी एंड आई डोंट अप्रिशिएट द बिहेवियर, आफ्टर सम टाइम आई लूज माई माइंड, आई गेट कैरिड अवे बाय द सिचुएशन और फिर मैं बहुत टेंशन लेकर के फिर उस पर गुस्सा करती हूं. अब गुस्सा मैंने इसीलिए किया क्योंकि मैं मां हूं और मां की बात ये बच्चा नहीं सुन रहा है. अब जब बच्चा मां का नहीं सुन रहा है, आई हैव कम इन टू दैट रिलेशनशिप बिटवीन अ चाइल्ड एंड अ पेरेंट एंड द पेरेंट ईगो ओवरटेक्स माई ओरिजिनल पर्सनैलिटी. Original personality is I am peaceful, I am loveful, I am easy. But the moment I come into role consciousness, I forget my original, innate, absolute, intrinsic consciousness of peace. जहाँ peace नहीं है, वहाँ पर फिर stress हो जाता है. और फिर जब मैंने बच्चे पे गुस्सा किया, एक तो anger, उसका फिर negative impact on my physiology, psychology and the negative impact on the relationship, that's on all add-on problem I'm creating. Lekin maine stress le liya. Kyun? Kyunki main maa ke personality ke aadhaar se cheezon ko dekh raha tha. I'll give you a very simple example. Say for example, you know, अगर मैं अपने ओरिजिनल आइडेंटिटी को समझ पाऊं कि एक ड्रामा है और उस ड्रामा में एक हीरो है और लेट अस अज्यूम एक अदर को एक्टर है एंड वो को एक्टर और हीरो का आपस में थोड़ा लड़ाई झगड़ा हो रहा है एंड दे यूज लिटिल हार्श वर्ड्स अगेंस्ट ईच अदर लेट अस अज्यूम एंड आफ्टर द टेक इज ओवर द डायरेक्टर सेज कट वंडरफुल सीन टू गुड द एक्टर एंड द को एक्टर वो दोनों आपस में गले मिलेंगे बड़े प्यार से बैठेंगे बातें करेंगे अरे ओरिजिनली में वो दोस्त हैं लेकिन जब वो पर्दे पे थे जब वो शूटिंग चल रहा था तो वो एक दूसरे के बहुत झगड़ा कर रहे थे बट वो झगड़ा वॉज नॉट गिविंग देम स्ट्रेस वो झगड़ा वॉज नॉट अ रियल डिपिक्शन ऑफ एंगर ओरिजिनली में दे नो द सीन इज ओवर मैं ओरिजिनली में एक हीरो हूं या मेरा जो भी ओरिजिनल नाम है मैं ओरिजिनल को एक्टर हूं मैं तो किरदार निभा रहा था आई वॉज जस्ट प्लेइंग द रोल ओरिजिनली में आई एम से गिरीश प्लेइंग द रोल ऑफ एक्स वाई जेड तो कितना ब्यूटिफुल है और ब्रह्मा कुमारी इस बात को बहुत अच्छी तरह हाईलाइट करती है कि मैं इस शरीर सॉयल एस ओ आई एल पंच महाभूतों का ये शरीर बना इससे डिफरेंट मैं आज सिंगल हूं बैचलर हूं कल मेरी शादी हो जाएगी तो मैं हस्बैंड बनूंगा फिर मैं पिता बनूंगा आगे चल करके मैं दादा बनूंगा ये हम बन रहे हैं स्ट्रेस का प्रॉब्लम ये है कि हम जीवन में बस बनना ही चाहते हैं जो मैं ओरिजिनली में हूं उससे हट करके हम कुछ चीजों में अपने आप को आइडेंटिफाई कर रहे हैं मैं कौन हूं मैं हिंदू हूं मैं कौन हूं देन हिंदू तो फिर किसी और के साथ मेरा डिफरेंसेस आ गया मैं पुरुष हूं मैं इंडियन हूं मैं गुजराती हूं बचपन से ही गुजराती थे क्या बचपन से ही गिरीश थे क्या नहीं भारतीय संस्कृति में नामकरण समारोह में अलग अलग कम्युनिटी में अलग अलग होगा लेट अस अज्यूम नामकरण समारोह 28वें दिन में होता है तो 27 डेज तक ये कौन था जस्ट अ पीस ऑफ फ्लैश बोन्स अ मास ऑफ बॉडी 28वें दिन में ऑफिशियल सेरेमनी में गिरीश को आधार कार्ड गिरीश थप्पा लग गया एंड दैट इज ओके कोई गिरीश है कोई मनीष है कोई हरीश है लेकिन ओरिजिनली में मैं गिरीश के पहले भी तो नामकरण के पहले भी तो था तब हम बच्चे थे बेबी थे तो इस आधार से ब्रह्मा कुमारी हमको अपने ओरिजिनल आइडेंटिटी का ज्ञान देता है एंड अगर मैं इस आधार पर रहकर जीवन जीऊं लाइफ बिकम्स वेरी इजी सो फ्रॉम अ रॉन्ग अक्वायर्ड आइडेंटिटी पोजिशन कलर कास्ट क्रीड नेशनैलिटी जेंडर पोस्ट पोजिशन स्टेटस इन द सोसाइटी से हटकर देर इज नथिंग रॉन्ग अबाउट ऑल दोज थिंग्स बट कैन आई बी ऑलवेज बी इन अ कॉन्शियस अवेयरनेस कि आई एम अ सोल मोबाइल फोन में जैसे सिम कार्ड होता है वैसे ही मैं अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु आत्मा हूं और वो कॉमन है इट्स एन एनर्जी इट्स अ फोर्स इट्स पावर आध्यात्मिक लैंग्वेज में उसको आत्मा या फिर उसको रूह या उसको सोल कहते हैं या स्पिरिट कहते हैं और बाय डिफॉल्ट आत्मा का अपना इननेट इंट्रिंसिक कोर एब्सोल्यूट वैल्यू है एब्सोल्यूट नेचर है फॉर एग्जांपल गन्ना अर्थात शुगर केन आप उसको कितना भी क्रश करो व्हाट कम्स आउट would be sweet sugar cane juice. And उस sugar cane juice का हम लोगों ने जैगरी बनाया sugar बनाया उस sugar से sugar syrup बनाया उससे हमने चाशनी बनाया उससे हमने गुलाब जामुन बनाया रसगुल्ला बनाया जलेबी बनाया You dip anything in that sugar syrup by default. Because sugar is made of sugar cane and sugar cane is naturally sweet. So the outcome of the taste of gulab jamun, rasgulla or jalebi is bound to be sweet. अब अगर मैं अपने आप को मान लू कि मैं आत्मा sugar cane हूं originally sweet, originally peaceful, originally lovely, originally powerful. And then when I become a father, a doctor, a nurse, a paramedic, a husband, a grandfather, a friend, a son, a daughter, a daughter-in-law, whatever you are making out of it, a vahapar, paristhiti anusar, koi mujh personality ko crush kare, ganne ko crush karna padta hai, tabhi juice niklega. Lekin jab paristhiti, log, situation, career, bacche, relationship, jo maine pehle bataya, external forces, jab ye mujhe crush karne ka prayas kare, originally kya nikalna chahiye? Sweet. Aap America ka ganna khao, ya Kolhapur ka ganna, ya UP ka ganna, kahin par bhi you crush the sugar cane, originally it will be sweet. नींबू को निचोड़ेंगे तो खट्टा ही निकलेगा, मिर्ची को निचोड़ेंगे तो या खाएंगे तो तीखा ही लगेगा. Nobody, no original thing doesn't loses its, you know, innate quality. एक ही व्यक्ति है संसार में, वो मनुष्य. हम परिस्थिति अनुसार अपने आप में चेंजेस लेकर आ रहे हैं और हम अपने कोर पर्सनालिटी को भूलते हैं, परिस्थिति के अधीन हो जाते हैं. द सिचुएशन ओवरवेल्म्स मी एंड दैट इज इक्वल टू स्ट्रेस. इन सिंपल टर्म्स, स्ट्रेस इज अ पेन, एक इंडिकेटर है वो, एक 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 मुझे क्या कहूं मैं, एक चिन्ह है वो जो मुझे बता रहा है, गिरीश यू नीड टू चेंज, आई नीड टू चेंज विथ रिस्पेक्ट टू Not trying to change the other person. और हम जिंदगी में यही mental, flawed mental model के आधार से चलते हैं कि वो प्यार करे, वो शांत रहे, वो मुझे understand करे. मैंने इतनी मेहनत की थी, result मेरे favor में हो. And when things doesn't happen my way, when the universe doesn't behave my way, I don't feel good about it. And it can overwhelm me with stress, anxiety and depression, and in the whole process it can be anger also. Aur ye kahan se aaya? Bachpan se hua. Bachpan se lekar mujhe ye impression mummy papa society ne diya ki, you know, things should happen your way, not necessarily. Aur iske karan mujhe tanav aa jata hai. So at the core of it, when I realize, when I become aware ki who am I am a positive personality, main bahut meetha hu, shaktishali hu, powerful hu, to automatically mere jeevan se paristhiti negative ho sakti hai, non conducive ho sakti hai, but I remain steady, stable, serene, peaceful. Bas mujhe us role consciousness se hat karke soul consciousness ki sthiti mein अपने आप को लाना पड़ेगा. और इसी से रिलेटेड अगर मैं आपको एंगर कहूं, आई मीन आप सब मेडिकल फील्ड से रिलेटेड हो, आप जानते हो, एंगर इज, यू नो, एंगर, गुस्सा इज लाइक ड्रिंकिंग पॉइजन एंड एक्सपेक्टिंग द अदर पर्सन टू डाई. ऐसा हाल है. जब हम गुस्सा करते हैं तो सबसे पहले हमको नेगेटिव इम्पैक्ट हमारी फिजियोलॉजी को करता है, इमोशनली, साइकोलॉजिकली, तो बहुत कुछ करता है. तो मुझे इसको समझना है. आपको मैं बस एक ही बात बताता हूं विद द रॉन्ग आइडेंटिटी. मान लीजिए, एक सिचुएशन देता हूं. मान लीजिए पिता, यू नो, फादर, घर में छोटा बेबी है, पापा लेट नाइट थक गया है, सारा दिन ऑफिस का काम करके ही कम्स बैक एट 10 एट नाइट, एंड द चाइल्ड इज ईगरली वेटिंग फॉर डैडी टू कम होम बिकॉज ही वॉन्ट्स टू प्ले विद डैडी. और जैसे ही पापा थका हारा, डेड टायर्ड, ही कम्स होम, the little one is bubbling with energy, and the moment he sees his dad, the child says, papa abhi mere saath khelo, because he was waiting for the whole day for daddy to come back so that I can spend good time with daddy. Aur wo papa, us chote se bacche ka, you know, khubsurat chehra, the innocent chehra, the cuteness, wo dekhkar papa ka waise hi aadha se zyada thakan dur ho jata hai, aur us bacche ko kehta, chalo theek hai, khelte hain. Aur kya khelenge? To chota baby kehta hai, चोर पुलिस खेलेंगे. ओ माई गॉड, अभी रात के 10 बजे इसको चोर पुलिस. पापा ने कहा डन, बच्चे की खुशी के लिए. एंड पापा ने ही उसको पुलिस का ड्रेस खरीद के दिया था. एंड ही वेयर्स दैट खाकी ड्रेस, द कैप, द विसिल, द स्टिक, द टॉय गन, एवरीथिंग इज रेडी. एंड बाय डिफॉल्ट बच्चा पुलिस बनेगा और पापा चोर बनेगा. दैट इज हाउ ही एंजॉयज द प्ले. एंड द मोमेंट ही वेयर्स द ड्रेस, प्लीज लिसन टू मी वेरी केयरफुली, द मोमेंट ही वेयर्स द ड्रेस उसके अंदर पावर आ जाता है, उसका लैंग्वेज चेंज हो जाता है. पता है पापा को क्या, पापा स्लैश चोर को क्या कहता है, ओए इधर नहीं बैठने का, एक डंडा लगाऊंगा मैं, जेल में डाल दूंगा, समझते क्या अपने आप को. एंड ही इज बिकम रूड एंड पावरफुल. एंड चोर सो कॉल्ड पापा डरता है, नहीं 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 चोर अंकल प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, अब मैंने गलती नहीं की है, मुझे प्लीज जेल में नहीं डालिए, प्लीज मुझे मत मारिए. द मोर द पापा फील्स थ्रेटेंड, ज्यादा मजा बच्चे को आता है. पुलिस को तब मजा आएगा जब पापा डरेगा, और अगर पापा नहीं डरेगा तो पता है बच्चा क्या बोलेगा, मेरे को नहीं खेलना आपके साथ. आई मीन ही इज जस्ट नॉट एंजॉयिंग बिकॉज ही वॉन्ट्स टू यू नो बॉस ओवर द डैड. अगर डैड बॉस मतलब वो फीलिंग में नहीं आ रहा है तो फिर उसको मजा नहीं आएगा, द गेम इज यू नो मजा ही लॉस्ट. सो पापा डरता बिकॉज ही नोज द चाइल्ड वॉन्ट्स टू बी हैप्पी. और वो डरने डराने का प्रोसेस है ना, इंटेंसिटी बढ़ता जाता है क्योंकि बच्चे को मजा आ रहा है और बच्चे की खुशी में ही पापा की खुशी है. सो ही एक्ट्स मोर ऑफ, उसको बहुत डर लग रहा है, बहुत घबरा रहा है, बहुत ही डर की भावना में. और बच्चा डरा रहा है, पापा डर रहा है, डरने डराने के प्रोसेस में बच्चा क्या करता है, पापा को धक्का मारता है. ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था डराने का, लेकिन ऐसी गलती से हो जाता है क्योंकि द चाइल्ड इज कंप्लीटली एनग्रॉस्ड इन द रोल ऑफ द पुलिस. और वो धक्का कन्वर्ट्स इनटू अ बिग टाइट स्लैप ऑन पापा'स फेस, जोर से उसको चाटा लग जाता है. आई मीन द चाइल्ड इज ऑल्सो सरप्राइज, गलती से हो गया. कैन आई आस्क यू अ क्वेश्चन, क्या उस वक्त रियल में पापा ने एक जोर से चाटा खाया, क्या उस वक्त पापा को गुस्सा आएगा? पीपल इन इंडिया हु हैव आस्क्ड दिस क्वेश्चन, दे हैव सेड नो. नाउ द क्वेश्चन इज क्यों नहीं गुस्सा आया. एंड सिंपल लॉजिक लोग मुझे देते हैं, गिरीश मेरा बेटा है ना, गेम था ना, अरे ड्रामा था ना, पापा तो बच्चे की खुशी के लिए नाटक कर रहा था ना. नाउ द टाइट स्लैप, द फिजिकल पेन, द ईगो पेन, द इमोशनल पेन इज ऑल टेकन केयर ऑफ. एंड पापा बोलेगा कोई बात नहीं बेटा आ जाओ, और गले लगा लेगा. ओ माई गॉड, वेर इज एंगर. और कई लोग तो मुझे ये भी जवाब देते हैं, पापा को इसीलिए गुस्सा नहीं आया क्योंकि पापा को बच्चे से प्रेम है, मेरा बेटा है, मेरा है. कैन आई आस्क यू क्वेश्चन, देखना कितना कॉन्ट्रोवर्शियल है, कितना कॉन्ट्रोडिक्टरी है. आज हमारे घर में, हमारे लाइफ में हम सबसे ज्यादा गुस्सा अपनों पे करते हैं, जिनसे हमें स्नेह है ना, उस पे ही सबसे ज्यादा गुस्सा करते हैं. इफ दैट इज द राइट लॉजिक, तो फिर पापा को बच्चे पे गुस्सा आना चाहिए, वो मेरा है ना, मेरे से तो प्यार बढ़ना चाहिए, मेरे में तो फॉरगिवनेस आना चाहिए, मेरे में तो उस गलती को इग्नोर करना चाहिए. बट रियल लाइफ में दुनिया में मैं, मुझे कोई गाली दे देना मैं इग्नोर कर लूंगा, लेकिन अपने मुझे तकलीफ देते हैं, मेरा अपना बेटा मेरे साथ, व्हाई आर यू क्राइंग, व्हाई आर यू गेटिंग एजिटेटेड, नहीं रही है ना. सो आई मीन हम सब साइकोलॉजिकली फ्लॉड मॉडल्स पर ऑपरेट कर रहे हैं. पता है द रियल रीजन व्हाई पापा को बच्चे पे गुस्सा नहीं आया? द सिंपल आंसर इज पापा जो था ना वो चोर बना ही नहीं, वो तो चोर की एक्टिंग कर रहा था, वो ओरिजिनली में पापा था. मेरा बेटे ने पुलिस बन करके चोर को मारा, अर्थात मुझ पापा को मारा, बट हु एम आई? आफ्टर गेटिंग दैट बिग टाइट स्लैप ऑल्सो पापा वॉज इन अ वेरी हाई स्टेट ऑफ अवेयरनेस एंड कॉन्शियसनेस, आई एम अ डैड, आई एम प्लेइंग अ गेम एंड दिस इज जस्ट अ मियर गेम, लाइफ इज अ गेम. I became a daddy, I became a grandfather, I became a doctor, I am the owner of the hospital, I am the head of the department, I am head nursing staff, I am technician XYZ, ye bane. Aur us process mein agar koi aapas ke relationship mein emotional aapko chaata laga deta hai, to hum itne negative ho jate, humko itna vengeance, itna outrage, itna negativity, itna guilt, itna bura lagta hai. Pata hai kyun? क्योंकि हम उस रोल के साथ आइडेंटिफाई कर गए. अगर पापा अपने आप को रियल में चोर मानता था ना, तो उसको गुस्सा होता था पुलिस के ऊपर, इसने मुझे क्यों हाथ लगाया. लेकिन पापा पुलिस बना ही नहीं, वो तो ओरिजिनल पापा था। तो ओरिजिनली में मैं गिरीश, मैं डॉक्टर, मैं नर्स, मैं मैनेजर, मैं हस्बैंड, मैं हेड ऑफ द फैमिली, ओरिजिनली में मैं आत्मा, और मैं पिता का रोल कर रहा हूं, मैं बॉस का रोल कर रहा हूं, मैं डॉक्टर का। द मोर वी डू दिस, द मोर आई विल बी इन अ स्टेट ऑफ माय ओरिजिनल कॉन्शियसनेस ऑफ स्वीटनेस। गन्ना ओरिजिनली स्वीट है। इसी तरह इस संसार में हर मनुष्य आत्मा, द सिम कार्ड, दिस इज माय मोबाइल फोन, मैं ओरिजिनली में शांत हूं, शक्तिशाली। इसको आप प्रैक्टिस करिए। इसके अलावा और भी बहुत सारे टेक्निक्स हैं जो फिजिकल लेवल पर, इमोशनल लेवल पर, साइकोलॉजिकल लेवल पे टेम्पररी रिलीफ दे सकते हैं, यू शुड हैव अडॉप्टेड, बट लॉन्ग टर्म परमानेंट चेंज वेयर इन आई एलिमिनेट स्ट्रेस, स्ट्रेस को खत्म करना है, मैनेज नहीं करना है, एंगर को खत्म करना है, मैनेज नहीं करना है, इट शुड नॉट बी अ पार्ट ऑफ मी। ओनली लव, पीस, हैप्पीनेस, पॉजिटिविटी शुड बी अ पार्ट ऑफ मी, एंड व्हेन आई एम पॉजिटिव then I become a positive daddy, positive husband, positive doctor, positive head of the department, positive whatever, and life becomes easy. Challenges aate rahenge, but I am positive. Friends, we'll do 2 minutes of meditation. Brahma Kumari's ka jo Raj Yog meditation course hai, uska fundamental basis hi ye hai, from wrong identity to the correct identity. Aur jitna hum isko samjhenge, life would become easy, peaceful and successful. Just sit back. Let's try to change our awareness consciously. Halke hokar ke baithe. We'll do 2 minutes of meditation. Swayam ke saath we will spend some time. We will go into that sacred space of my original personality. गहरी सांस लें एंड ब्रीद आउट, स्लोली इनहेल एंड एक्सहेल। व्हाइल यू आर इनहेलिंग एंड एक्सहेलिंग, शिफ्ट योर कॉन्शियसनेस एंड अवेयरनेस फ्रॉम योर एक्सटर्नल वर्ल्ड, द वर्ल्ड ऑफ फॉर्म, मैटर, कलर, जेंडर, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, पोज, पोजिशंस, and keep inhaling and exhaling. Focus your attention onto the center of your forehead. I am a sparkling star. Ati sukshma jyoti bindu, atma. Originally, shant swaru, shakti swaru, prem swaru, anand swaru. उसको फील करने का प्रयास करें, कंप्लीट साइलेंस। प्लीज डोंट आइडेंटिफाई योरसेल्फ विद एनीथिंग एल्स अदर देन अ पीसफुल पर्सनालिटी। मेरा मन शांत होता जा रहा है, मेरा शरीर भी शांत होता जा रहा है, मेरी भावनाएं भी शांत होती जा रही। आई एम फीलिंग रिलैक्स, मन से और शरीर से। आई एम इन अ सीक्रेट स्पेस, द स्पेस विद इन। इट्स अ ब्यूटिफुल प्लेस वेयर देर इज कंप्लीट साइलेंस, ट्रैंक्विलिटी। I feel relaxed and easy. Take a deep breath in and out. Slowly move your fingers of your hands and legs. Come back to the awareness of this world. That originally I am peaceful. Now I have to complete my responsibilities peacefully, lovingly, powerfully, happily, एक happy doctor, एक happy nurse बन करके मुझे अपने जीवन को चलाना है। एक हैप्पी डॉक्टर बन करके मुझे अपने जीवन को चलाना है। आई विश दैट दिस चेंज इन कॉन्शियसनेस विल हेल्प ऑल ऑफ अस टू लीड अ पीसफुल स्टेबल वंडरफुल हैप्पी लाइफ इवन इफ द सर्कमस्टेंसेस आर अनप्रीसिडेंटेड इज चैलेंजिंग whether COVID-19 or no COVID-19. My state of mind is not dependent on that. My state of mind depends on what consciousness, what identity I have in my life. Wishing you a very wonderful future, stress-free, anger-free life. Thank you. Om Shanti.
ओम शांति। आज का विषय है आपके लिए प्रिवेंशन ऑफ हार्ट अटैक। ये शब्द हार्ट अटैक बहुत ही कॉमन शब्द है और नंबर वन किलर है सारे विश्व में। लगभग 1/3 डेथ्स सारे विश्व में और भारत में इसी कारण से होती हैं। लगभग एक दिन में 1.5 लाख लोग मर जाते हैं सभी कारणों से मिलाकर के। उसमें से लगभग 48,000 डेथ्स हार्ट की वजह से होती है। तो ये हार्ट अटैक होता क्यों है? पिछले मैंने 40 साल के मेडिकल प्रोफेशन में पाया है, जब हम एंजियोग्राम करते हैं कई लोगों को तीनों आर्टरीज ब्लॉक हैं, ट्रिपल वेसल डिजीज है, डिफ्यूज डिजीज है और उनकी इजेक्शन फ्रैक्शन तब भी 60% है और फिर भी हार्ट अटैक नहीं होता है। और कई यंग लोग हैं, 30 साल के हैं, 25 साल के हैं, 20 साल के हैं, उनको एंजियोग्राफी करते हैं तो ब्लॉक सिर्फ 20-30% ही ब्लॉक है, किंतु एक मेजर हार्ट अटैक हो जाता है और काफी हिस्सा हार्ट का डेड हो जाता है और उनको हार्ट की इजेक्शन फ्रैक्शन जो पंपिंग पावर नॉर्मली 60% होती है अचानक से वो 20-25% रह जाती है और उनकी लाइफ की क्वालिटी काफी कंप्रोमाइज हो जाती है। तो ये जो टॉक है, वैसे तो हमारे सभी मेडिकल प्रोफेशनल जो सुन रहे हैं, चाहे वो कार्डियोलॉजिस्ट हैं, फिजिशियंस हैं या किसी भी स्पेशलिटी से बिलोंग करते हैं या मेडिकल ऑफिसर्स हैं या इवन नर्सिंग स्टूडेंट्स हैं या नर्सिंग स्टाफ हैं, जो भी ये सुन रहे हैं या एनीवन पब्लिक के भी कोई व्यक्ति, कोई भाई बहन सुन रहे हैं, ये एक्चुअली उनके लिए मैंने टेलर मेड किया एक टॉक जो कि जिनके पास भी हार्ट है। तो हार्ट डिजीज का मुख्य कारण तो है ही कॉरोनरी आर्टरी डिजीज, कॉरोनरी एथेरोस्क्लेरोसिस। फिर भी अभी रिसेंटली अधिकतर पेशेंट्स ऐसे आते जा रहे हैं, स्पेशली यंग वंस जो कहीं ना कहीं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में है, आईटी में है या और ऐसे जो जहां डेडलाइंस बहुत ज्यादा है, ऐसे वर्क फील्ड में है जो बहुत हाईली स्ट्रेस जॉब्स हैं, वहां इवन नॉर्मल कॉर्नरी आर्टरीज होने के बावजूद भी उनको हार्ट अटैक हो रहे हैं। तो ये जो है हमको देखना है कि रियल कारण क्या है हार्ट डिजीज का। पिछले लगभग मैं समझता हूँ जब मैं दिल्ली के एक बड़े हार्ट के हॉस्पिटल में था, 25 साल पहले की बात है, तो मैं देख रहा था कि हमारे जो हार्ट अटैक्स 40 इयर्स से पहले के ग्रुप्स में आ रहे थे और हम इंटरवेंशन करने के भेजते थे फिर दोबारा आ जाते थे। तो मैंने देखा था कि हम लोग जब उन्हीं दिनों में पढ़ रहे थे जनरल्स में, सर्कुलेशन में, अमेरिकन हार्ट जर्नल में, कि लोग जो ज्यादा अधिक गुस्सा करते हैं उनको ज्यादा अधिक हार्ट अटैक्स होते हैं, लगभग 3.5 टाइम्स ज्यादा हार्ट अटैक्स होते हैं। अभी अगर हम ले लें इसको, अभी मैं एक स्टडी में आपको अगर ले लूं, एक मियोस की स्टडी है और एक शीप स्टडी है, उसमें बताया गया लगभग जो लोग गुस्सा करते हैं 2.3 टाइम्स ज्यादा हार्ट अटैक्स होते हैं और जो शीप स्टडी है उसमें बताया गया कि 9 गुना अधिक हार्ट अटैक्स होते हैं जो गुस्सा करते हैं। तो अगर आप क्रोध करते हैं तो समझ लीजिए आपको कितना अधिक चांस है हार्ट अटैक होने का, जस्ट बिकॉज ऑफ एंगर। आप सब कुछ करते हैं, डाइट भी ठीक है, आपकी एक्सरसाइज भी रेगुलर करते हैं, नींद भी अच्छी कर रहे हैं, किंतु अगर आपका क्रोध का स्वभाव है, आप छोट शॉर्ट टेम्पर्ड हैं, थोड़ी थोड़ी बात में क्रोध करते हैं, तो आपको 9 गुना अधिक चांस है हार्ट अटैक होने का। और इसकी अगर हम ये ऑड्स रेशियो 9 टाइम्स हैं, किंतु अगर उसका हम रेंज देखें 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल देखें तो 4.4 to 18 टाइम्स ज्यादा है। तो मतलब हार्ट जस्ट बिकॉज ऑफ एंगर आपको हार्ट अटैक होने का चांस 18 गुना हो जाता है। अगर आप इमोशनल अपसेट, कई लोग होते हैं ना बहुत सेंसिटिव होते हैं, इमोशनल होते हैं, कोई बात को फील कर लेते हैं, भावुक हो जाते हैं, بار بار دل بھر جاتی ہے. کوئی اچانک کوئی کسی کے یہاں شادی ہوتی ہے, کسی کی ڈیتھ ہوتی ہے, کوئی ایسی کوئی بات گھر میں ہو جاتی ہے, تو وہ ایموشنلی اپسیٹ ہو جاتے ہیں. تو ایون دیٹ از اس سے بھی دو گنا, اس سے جو ایموشنل اپسیٹ 2.7 times ہے مطلب ہارٹ اٹیک ہونے کا چانس. تو ہم کو ایسا سبھاؤ چاہیے جس میں اینگر بھی نہ ہو, ایموشنل اپسیٹ بھی نہ ہو. ڈپریسڈ موڈ اگر آپ کا ہے اس میں 2.5 times زیادہ چانسز ہے ہارٹ اٹیک ہونے کے. اگر آپ کا سیویئرلی ڈپریسڈ موڈ رہتا ہے تو آپ کو 5 times زیادہ چانس ہارٹ اٹیک ہونے کا. اگر آپ کو ٹینشن رہتی ہے تو اس میں 2.2 times زیادہ چانس ہے ہارٹ اٹیک ہونے کا. اگر آپ سیڈنیس, اگر آپ دکھی ہوتے ہیں, بات بات میں دکھی ہو جاتے ہیں, تو اس میں 2.2 times زیادہ چانس ہے ہارٹ اٹیک ہونے کا. اگر آپ فرسٹریشن, اگر اپنے کام سے فرسٹریٹ, آپ کو من میں کسی بھی کارن سے, گھر سے یا کارے ویوہار سے یا کہیں سے بھی کسی بھی فیلڈ میں آپ کو اگر فرسٹریشن آ گئی تو 2.2 times زیادہ چانس ہے ہارٹ اٹیک ہونے کا. اگر آپ کو ورک اسٹریس رہتی ہے, یہ ایک بہت امپورٹنٹ ہے. اس میں دو اسٹڈیز میں نے جو آپ کو میں کوٹ کر رہا ہوں, ایک شیپ اسٹڈی اور ایک الارم ریسپانس کا کیا افیکٹ ہوتا ہے, اس میں 6 times چانس ہوتے ہیں ہارٹ اٹیک ہونے کا. اگر آپ کے ڈیڈ لائنز ہیں, آپ لیٹ نائٹ کام کر رہے ہیں اور ڈیڈ لائنز کو میٹ کرنے کے لیے, تو آپ کو آج ہی یہ کام پورا کرنا ہے, کل مجھے کام دینا ہے, اور آپ اس کے لیے ٹو مچ آپ فوکسڈ ہو جاتے ہیں, ٹو مچ سارا ٹائم اسی ٹائم سوچتے رہتے ہیں, تو یہ جو ہے اس سے آپ 6 گنا ادھک چانس ہے ہارٹ اٹیک ہونے کا. اور اگر الارم ریسپانس مانا, اگر کبھی ایسی کوئی اچانک سے آپ کو کوئی ایسی سیڈ نیوز ملتی ہے, اچانک سے ایسی گھٹنا ہوتی ہے اور آپ اس میں ریئیکٹ کرتے, تو 14 times چانس ہوتے ہیں ہارٹ اٹیک ہونے کا. اور اگر آپ کو اینزائٹی رہتی ہے, چنتا رہتی ہے کیسے ہوگا کیا ہوگا, 1.6 times زیادہ چانس ہے ہارٹ اٹیک ہونے کا. اگر بریومنٹ ہو جاتی ہے, بریومنٹ کا ارتھ ہے اگر آپ کے گھر میں اچانک کسی کی ڈیتھ کی نیوز ملتی ہے, کسی کلوز ریلیٹو کی, تو اور آپ کو بہت اس سے پیار تھا, اس سے آپ کو بہت اٹیچمنٹ تھی, تو 21 گنا ادھک چانس ہو جاتا ہے ہارٹ اٹیک ہونے کا. تو یہ دیکھنے میں آیا کہ ہماری آرٹریز میں بلاک تو ہوتے ہیں, کولیسٹرول تو جمتا ہے, کنتو ہماری آرٹریز کریک کب کرتی ہیں, کیونکہ بلاک ہونے سے ہماری ہارٹ اٹیک نہیں ہوتا ہے. جب کلاٹ بنتا ہے ارتھات جب آرٹریز کریک ہوتی ہے, پلاک جب کریک ہوتا ہے یا السریشن ہوتی ہے, اس سے جو تھرومبس بنتا ہے, کلاٹ بنتا ہے, اس سے ہارٹ اٹیک ہوتا ہے. اگر ہمیں اس کو روکنا ہے تو آج ماڈرن اسٹیٹ آف آرٹ ماڈرن ہارٹ کیئر تو ہے, ہمارے پاس میڈیکیشن بھی ہے, ہمارے پاس انٹرونشنز بھی ہیں, ہم انٹرونشنل پروسیجرز کرتے ہیں. آج کل ہم لوگ میڈیکیٹڈ اسٹینٹس, ڈرگ ریلیٹنگ اسٹینٹس ہیں, اور ہم وہ یوز کرتے ہیں. اگر کسی کو ود ان 3 hours ہمارے پاس آ جاتا ہے تو اس کو ہم اینجیوگرافی کر کے اور اس کو ہم لوگ اس جو ہمارا جو انفارکٹ ریلیٹڈ جو پلاک ہے یا جو کلپریٹ پلاک ہے اس کو ہم امیجیٹلی اسٹینٹ کر دیتے ہیں نا, اس میں بلوننگ کر, بلون سے اس کو کیتھیٹر ڈال کے اس کو بلون کر کے اور وہاں پہ ایک اسٹینٹ فکس کر دیتے ہیں. بہت اچھے اچھے اسٹینٹس ہیں, ان کی کافی لائف ہوتی ہے, کنتو اس کے بعد بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ واپس کئی بار ہم نے دیکھے ہیں جو ریپیٹ اینجیوگرامس میں پیشنٹس دوبارہ سے 3 مہینے میں, 6 مہینے میں, 1 سال میں, 2 سال میں, ڈپینڈنگ آن دیئر لائف اسٹائل, وہ جو ہے واپس ان کے آرٹریز واپس وہ یا تو اسٹینٹ بند ہو جاتے ہیں, اسٹینٹ کا کم بند ہوتے ہیں, کنتو جو ان کے اسٹینٹ کے آگے بند ہو جاتا ہے. کیونکہ میں نے پچھلے جو لگ بھگ ہم نے Fab 98 سے جو 3D ہیلتھ کیئر لائف اسٹائل فار ہیلدی ہارٹ ہیپی مائنڈ ہیلدی باڈی پروگرام شروع کیا, جسے ہم CAD پروجیکٹ کے نام سے بھی جانتے ہیں, جو کہ ہمارا جو JW آٹومن گلوبل ہاسپٹل ریسرچ سینٹر اور DRDO کے جوائنٹ وینچر تھا, اور اس کو ہم نے DRDO سے کولابریشن, ڈاکٹر APJ عبد الکلام صاحب اس کے ون آف دی کوآرڈینیٹرس تھے, اور منسٹری آف ہیلتھ اینڈ فیملی ویلفیئر گورنمنٹ آف انڈیا سے اسپانسرڈ پروگرام تھا, اور اس میں ہم نے تین ٹرشری کارڈیک سینٹرز لیے تھے, دلی میں مولانا آزاد میڈیکل کالج اور GV پنت ہاسپٹل نیو ڈیلی. 1995 میں ان سے کولابریشن شروع کی تھی, اور پھر ہم نے ساتھ میں بامبے میں BJ میڈیکل کالج احمدآباد, جس کو ہم ہیومن مہتا انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی کے نام سے جانتے ہیں, اور تیسرا گرانٹ میڈیکل کالج, اور ساتھ میں JJ گروپ آف ہاسپٹلس. تو 3 ٹرشری کارڈیک سینٹرس کو اپنے ساتھ انوالو کیا تھا, ان کے یہاں سے اینجیوگرافی ڈاکیومینٹڈ پیشنٹس ہمارے پاس آئے تھے, اور ان کو ہم نے ایک ہیلدی لائف اسٹائل پروگرام کہیں یا 3D ہیلتھ کیئر لائف اسٹائل پروگرام ان کو دیا تھا, اور ود اسپاؤز 7 days ان ہاؤس اسٹے کے لیے اپنے پاس بلایا تھا, اور ان کو پھر ہم نے جو انٹروینشن دی پوری باڈی کے بارے میں ان کو ٹیچ کیا تھا, اور ان کو جو ہے ہم نے پورا ہارٹ کی اینیٹمی, ہارٹ کیسے کام کرتا ہے, ہارٹ کی فیزیولوجی, کیسے ہمارے پلاکس بنتے ہیں, کیسے ہمارے کولیسٹرول ہماری آرٹریز میں جمع ہوتا ہے, کون کون سے رسک فیکٹرز ہیں, بلڈ پریشر, ڈائبٹیز, اسموکنگ کا کیا رول ہے, اوبیسٹی کا کیا رول ہے, ڈسلیپیڈیمیا کا کیا رول ہے, جو فزیکل رسک فیکٹرز ہیں, فیملی ہسٹری کا کیا رول ہے, سیڈنٹری لائف کا کیا رول ہے ہارٹ ڈیزیز پیدا کرنے میں, سائیکولوجیکل رسک فیکٹر, سائیکو سوشل رسک فیکٹرز جیسے ٹائپ اے بیہیویئر, اینزائٹی, اینگر, آئسولیشن, سینیسزم, ہاسٹائل بیہیویئر, ڈپریشن, ان سب چیزوں کو ہم نے بہت گہرائی سے اسٹڈی کیا تھا, ان کو اوور آل ہیلدی لائف اسٹائل, جس کو ہم سائیکولوجیکل انالیسس ہم کہتے ہیں, اور ڈی آئی پی آر ڈیفینس انسٹیٹیوٹ آف سائیکولوجیکل ریسرچ نے ہمارے ساتھ کولابریٹ کیا تھا, اور ان کا پورا فیزیولوجی ڈیفینس انسٹیٹیوٹ آف فیزیولوجی نے ریسرچ, فیزیولوجی نے لائٹ سائنسز نیو ڈلہی نے ہمارے ساتھ اس میں کولابریٹ کیا تھا, اس سے ان کو ہم نے فیزیولوجی ای جی فرسٹ ڈے اینڈ لاسٹ ڈے ہم نے کیا, فرسٹ ڈے بیس لائن اور سیونتھ ڈے پھر ریپیٹ کیا, پھر تین مہینے پر, پھر چھ مہینے پر, پھر ایک نو مہینے پر, پھر بارہ مہینے پر, ایسے اس طرح سے ہم نے ان کو دو سال لگاتار فالو کیا, ان کا ای جی کو فالو کیا, ہارٹ ریٹ ویریبلٹی, اس کے دوارا ان کی سمپیتھیٹک اور پیرا سمپیتھیٹک ریسپانس کو ہم نے فالو کیا, تو ایسے ہم نے پورا ان کو ڈیٹیل اسٹڈی کیا, اینجیوگرافی سب پیشنٹس کرا کے ہی آئے تھے, ٹی ایم ٹی سب کا لگ بھگ ہوا تھا, یا پہلے پریویس ان کو ابھی ایم آئی ہوا تھا, تو اس طرح کے پیشنٹ سارے ہمارے پاس آئے تھے, کچھ لوگ اسٹریس تھیلنگ بھی کرا کے آئے تھے, ان کے لپڈ پروفائل, ان کے بلڈ شوگر, گلائکوجن, ہیموگلوبن, انسولین لیولس کو ہم نے اسٹڈی کیا, اسٹریس ہارمونس جیسے اپینیفرین اور اپینیفرین کو ہم نے اسٹڈی کیا, ڈوپامین لیولس کو اسٹڈی کیا, بیٹا انڈورفنز کو اسٹڈی کیا, سیروٹونین لیولس اسٹڈی کیے, کورٹیسول 8 AM 4 PM کو اسٹڈی کیا, فاسٹنگ انسولین لیولس کو اسٹڈی کیا, وہ سارے ہارمونس, میلاٹونین لیول کو اسٹڈی کیا, سلائیوا میں اسٹڈی کیا تھا اوور نائٹ, تو یہ سارے ہم نے ایک پیشنٹ کو مطلب پورا ڈیٹیل ہم نے اینالائز کیا تھا پورا کا پورا, ہے نا, اور ان کو دو سال تک ان کو اینالائز کیا, ماؤنٹ آبو اوپن ہارٹ ٹرائل ہم نے پبلش کیا سپٹمبر 2011 میں پبلش کیا, جو کہ 2013 میں ہم کو بتایا گیا بایو میڈ لیب ایک آفیشیل باڈی ہے یو ایس کی, کہ آپ کی اسٹڈی ورلڈ کی ٹاپ 20 اسٹڈیز میں نمبر ون ہے, اور لگ بھگ 2.5 سال وہ اسٹڈی نمبر ون پہ رہی, تو یہ گورو کی بات ہے, اور پھر امریکن ہارٹ ایسوسیشن کے سائنٹیفک اسٹیٹمنٹ میں بھی اسٹڈی ڈاکیومنٹ کی گئی ان آنرس کی اسٹڈی کے ساتھ, کہ یہ ایک ون آف دا میتھڈس ہے, میڈیٹیشن کا ایک راجوگا میڈیٹیشن ایک میتھڈ ہے, جس کے دوارا ہم اپنے آپ کو ایک افیکٹو میتھڈ ہو سکتا ہے, جس سے ہم اپنے ڈیزیز کو ریگریس کر سکتے ہیں, اس کے رسک فیکٹرز کو بھی ہم چینج کر سکتے ہیں, تو یہ جو ہے صحیح معنی میں ہم اگر ہارٹ اٹیک کی جب بات کر رہے ہیں, تو ہارٹ اٹیک کو ہمیں پریونٹ کرنے کے لیے تو ایتھروسکلروسس کو پریونٹ کرنا ہوگا, اور پلس جو ایونٹ ہونے والا ہے اس کو ہمیں چینج کرنا ہوگا, تو مین جو ہم نے جو پایا ہے, جو ہم نے پچھلے اسٹڈیز میں پایا ہے, کہ سائیکو سوشل رسک فیکٹرز جو ہیں وہ, جیسے میں نے تھوڑی دیر پہلے آپ کو بتایا, کچھ جیسے ہم نے بتایا کہ کیسے اینگر ہے, ڈپریشن ہے, سیویئرلی ڈپریسڈ موڈ ہے یا مائلڈلی ڈپریسڈ موڈ ہے, ایموشنل اپسیٹس ہیں, بریومنٹ ہے, یہ سب باتیں کتنا ہمارے کتنا مطلب اچانک سے پلاک کریک ہوتا ہے, السریٹ ہوتا ہے, اور اس پہ کیسے تھرمبس بنتا ہے, 700% بلاکیج ہوتی ہے, اس سے ہمیں ہارٹ اٹیک ہوتا ہے, تو اس کو ہمیں کیسے پریونٹ کرنا ہے, کیسے ہم اس کو پریونشن کریں, تو یہ جو پروگرام ہے 3-dimensional ہیلتھ کیئر لائف اسٹائل پروگرام جو ہم نے پچھلے ہم نے اسٹیبلش کیا ہے, اب ہم جیسے ہمارے پاس جو لوگ اینجیوگرام بھیجتے ہیں, میں ہم نے تو ابھی یہاں تک اس میں جیسے ہم نے اس میں پچھلے 22 سال کے انوبھو میں ہم نے پایا ہے کہ ہم ہر بلاک کو اس کے تھاٹ پیٹرن سے کوریلیٹ کرنا سیکھ لیا ہے, جو ہمارے پاس اتنا بڑا ڈاٹا بیس ہے, لگ بھگ 10,000 پیشنٹس ابھی تک آئے ہیں اینجیوگرافیکلی ڈاکیومینٹڈ پیشنٹس, ان کے اینجیوگرامس ہمارے پاس ہیں, ان کا سائیکولوجیکل انالیسس ہمارے پاس ہے, تو ہم ہر بلاک کو اس کے تھاٹ پیٹرن سے کوریلیٹ کیا ہے, اور پھر جب ریپیٹ اینجیوگرام ہوا ہے تو کون سے پلاک کھلے ہیں, کون سے پلاک نہیں کھلے ہیں, یا کچھ بڑھ گئے ہیں, واٹ ایور ہیز ہیپنڈ, تو اس کو ہم نے اس کے تھاٹ پیٹرنس کے ساتھ ان کو کوریلیٹ کیا, ان کے سائیکولوجیکل بہیویئر کے ساتھ, تو کون سا پیشنٹ اس میڈیٹیشن کے دوارا, راجوگ میڈیٹیشن کے دوارا, برہما کماری راجوگ میڈیٹیشن کے دوارا, انہوں نے کتنا اپنے آپ کو پریورتن کیا ہے, تو اس کے دوارا ہم نے پایا کہ ہم اب اینجیوگرام دیکھ کر کے ہمیں پتہ لگ جاتا ہے کہ پیشنٹ کا کیسا اس کا تھاٹ پیٹرن ہے, تو کافی حد تک ان کو اس کو کوریلیٹ کر پاتے ہیں کہ اگر ایل ایم سی میں بلاک ہو رہا ہے, اس کا آسٹیل بلاک ہو رہا ہے, یا پروکسیمل ہے, مڈ ہے, ڈسٹل ہے, یا ایل ای ڈی میں اگر بلاک ہے, آسٹیل ہے, پروکسیمل, مڈ, ڈسٹل ہے, یا اس کی برانچ میں D1 یا D2 میں بلاک ہے, یا سیپٹلز میں بلاک ہے یا ریمس انٹرمیڈیٹس میں بلاک آ رہا ہے, اس کے بھی کہاں پر آ رہا ہے, آرٹری ہے, ایل سی ایکس, لیفٹ سرکمفلیکس, اس میں اگر بلاکیج ہے کہاں پر, آسٹیریل پراکسیمل مڈ ڈسٹل یا اس کی جو برانچز میں او ایم ون, او ایم ٹو, او ایم تھری میں ہیں, تو ہم تھاٹ پیٹرنس جو ہمارے پاس سائیکولوجیکلی اس کا جو انجیوگرام دیکھ کے ہم وہ کافی اس کے بارے میں آئیڈیا لگ جاتا ہے اس کے تھاٹ پیٹرنس کیسے ہوں گے. اور جب ہم راجیوگ میڈیٹیشن کے دوارا ان کو ماڈیفائی کر پاتے ہیں, تو یہ جو بات ہے ہمیں جو پتہ لگی ہے اس کے دوارا, ہم ابھی آج کل جو پروگرام کر رہے ہیں جو سیون ڈاؤز سیون ڈیز کا ان ہاؤس پروگرام ہے, اس میں ہمارے پاس آتے ہیں جو پیشنٹس, اور اس میں ہم یہ جو ہے بیسک جو ہمیں بات جو ہم نے جو راجیوگا میڈیٹیٹیو لائف اسٹائل یا ہم کہیں تھری ڈائمینشنل لائف ہیلتھ کیئر لائف اسٹائل میں, کیونکہ آج کی جو ماڈرن ہیلتھ کیئر لائف اسٹائل ہے وہ ون ڈائمینشنل ہیلتھ کیئر لائف اسٹائل ہے. صرف ہم باڈی کو ایڈریس کرتے ہیں, چاہے ہم پیشنٹس کو اینٹی پلیٹلیٹ ایجنٹس دیتے ہیں یا ہم لوگ اینٹی انجائنلز دیتے ہیں یا ہم ان کو انٹروینشن دیتے ہیں, اسٹیٹنس دیتے ہیں, ہم صرف باڈی کو ایڈریس کر رہے ہوتے ہیں. جبکہ انسان خالی باڈی نہیں ہے, انسان ایک ہیومن بینگ ہے, ملٹی ڈائمینشنل بینگ ہے, ایٹ لیسٹ تھری ڈائمینشنل بینگ تو ہے, اس میں ایک بینگ ہے اور ایک اس کی باڈی ہے, ہیومن بینگ, آئی ایم اے بینگ ود دا ہیومن باڈی, ہے نا. اور اس کو ہمیں ریئلائز کرنے کی آوشیکتا ہے. ہمارا جو بیسک کانسیپٹ ہمارا جو ہے وہ یہی ہم آپ کو کہنا چاہتے ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں آپ ہارٹ اٹیک سے بچنا چاہتے ہیں, تو آپ اس پروگرام کے تین مکھیہ کانسیپٹ کو آپ یوز کر سمجھ لیجیے. پہلی جو بات ہے وہ ہے سیلف ریسپانسبلٹی. اگر آپ چاہتے ہیں آپ کو ہارٹ اٹیک نہ ہو, اور ریئل سائنس میں یہ پروو ہو چکا ہے, یہ ہارٹ کی جو پرابلم ہے اس کو ٹوٹلی پریونٹیبل ہے, یہ آپ کے ہاتھ میں ہے, آپ چاہیں تو اس کو ٹوٹلی پریونٹ کر سکتے ہیں, آپ کو جیون میں کبھی ہارٹ اٹیک آئے ہی نہیں. آپ اگر آج بھی ڈیٹرمنیشن کر لیں تو آپ اپنے ہارٹ کو پوری طرح سے ہیل کر سکتے ہیں. اور ہارٹ کیا آپ اپنی ہارٹ کو تو ہیل کریں گے کہ ساتھ ساتھ اپنی اور بھی اپنے من کو بھی ہیپی بنائیں گے, اور شریر کی لگ بھگ ہر کوشکا کو آپ نرش کریں گے. شریر کی ہر کوشکا کو, چاہے وہ آپ کے لیور ہے, چاہے آپ کا انٹسٹائن ہے, چاہے آپ کے لنگز ہیں, چاہے آپ کے برین کی سیلز ہیں, آپ کی پانچوں کرمی دیں, آنکھ ناک مکھ اسکن ہے, اور یہ آپ کا امیون سسٹم ہے, آپ کا ہارمونل اینڈوکرینل سسٹم ہے, آپ کا مسکولوسکیلٹل سسٹم ہے, آپ کا ایکسکریٹری سسٹم ہے, سب کو آپ ہیلدی بنا سکتے ہیں. ہم نے دیکھا ہے جو پیشنٹس اس پروگرام میں آتے ہیں ان کو نہ خالی ان کی بلاکیجز کھل جاتی ہیں, ریگریس ہو جاتی ہیں, ساتھ ساتھ ان کا بلڈ پریشر جو سالوں سے چار پانچ ٹیبلٹس پہ ان کا بلڈ پریشر رہتا تھا وہ بھی کنٹرول ہو جاتا ہے, اور دوائیاں لگ بھگ دھیرے دھیرے کم ہوتے ہوتے چار سے دو, دو سے ایک, اور ایک سے آدھی ٹیبلٹ. کچھ لوگ تو دے آر آف اینٹی ہائپرٹینسس. ڈائبٹیز جو ہوتی ہے, جن کی ڈائبٹیز کی انسولین کی 50-60 یونٹ انسولین بھی چل رہی ہے, ٹیبلٹس بھی چل رہی ہیں, اس کے بعد بھی ان کا ایچ بی ایم این سی 10-11-12-13 رہتا ہے, وہ ہم نے دیکھا ہے جب وہ اس پروگرام کو ریگولرلی فالو کرتے ہیں ان کا اسٹریس مینج ہو جاتا ہے, ان کا ڈائٹ پریورتن ہو جاتا ہے. کیونکہ اس پروگرام کا جو تین مکھیہ جو بندو یہی ہیں کہ ایک تو ہم اسپرچل کیئر دیتے ہیں, ایک مینٹل کیئر دیتے ہیں, ایک فزیکل کیئر دیتے ہیں. تو جو ہیلدی ہم تینوں کیئر جو دینی ہے وہ ہمیں سمجھنا کہ ہماری ذمہ داری ہے. ہیلتھ کیئر, ہیلدی مینس ہیل ڈائی سیلف, ارتھات ہیل ڈائی سیلف, ارتھات ہیل یور سیلف. سارے وشو میں ایک ہی آدمی جو آپ کو ہیل کر سکتا ہے, جو آپ کے بلاکیج کھول سکتا ہے, جو آپ کے بلڈ پریشر ڈائبٹیز کو ٹھیک کر سکتا ہے, آپ کے کولیسٹرول کو ٹھیک کر سکتا ہے, وہ صرف آپ ہیں. ڈاکٹر آپ کو گائیڈ کر سکتا ہے, آپ کے ریلیٹیوس, آپ کے پیرنٹس, آپ کے ہسبینڈ وائف, آپ کے اسپاؤز, آپ کے بچے آپ کی مدد کر سکتے ہیں, اور بھگوان آپ وہ انسان تو آپ کی ایک گنا مدد کرے گا اگر آپ نے کی ہوگی تو آپ کی وہ کر دیتے ہیں, کنتو بھگوان اگر آپ اس کی ایک قدم اس کی ڈائریکشن پہ چلتے ہیں پرماتما آپ کو ہزار گنا مدد کرتا ہے. تو کنتو ریسپانسبلٹی آپ کی, پرائمری ریسپانسبلٹی آپ کی ہے. اگر آپ کی ایفرٹ زیرو ہے تو بھگوان آپ کی ہزار گنا مدد بھی کرنا چاہے, ڈاکٹرز آپ کی ہزار گنا مدد بھی کرنا چاہے, تو سب آنسر زیرو ہوگا, اس کا کوئی فائدہ آپ کو نہیں ہوگا. تو آپ اپنے ہاتھ میں اپنی ذمہ داری اپنے ہاتھ میں لیجیے, اپنا سواستھ کے اپنے آپ کو, اگر آپ کو ہارٹ کی پرابلم ہو گئی, آپ کی آرٹریز بلاک ہیں, گھبرائیے نہیں. اگر آپ کو ہارٹ اٹیک ہو گیا, آپ چاہیں تو یہ ہارٹ اٹیک آپ کو دوبارہ کبھی جیون میں نہیں آئے گا. اگر ابھی تک نہیں ہوا ہے تو آپ آج سے ایک شپتھ لے لیں, پرتیجا کر لیں, مجھے ہارٹ اٹیک نہیں چاہیے, مجھے بلڈ پریشر نہیں چاہیے, مجھے ڈائبٹیز نہیں چاہیے, مجھے ہائی کولیسٹرول نہیں چاہیے, مجھے موٹاپن نہیں چاہیے. یہ صرف آپ کے ہاتھ میں ہے, تو آپ اپنے ہاتھ میں اپنی ذمہ داری لیجیے. جو بھی سی وی ڈیز ہیں آپ ان کو اپنے آپ کو پریونٹ کر سکتے ہیں, तो ये जो है, ये आप एक अपने आप से प्रतिया करें, सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी। दूसरी बात सेल्फ अवेयरनेस, दूसरा जो कॉन्सेप्ट है सेल्फ, जब मुझे अपने आप को हील करना है तो मुझे पता होना चाहिए मैं कौन हूं, हु इज द हीलर एंड वॉट नीड्स टू बी हील्ड। हीलर कौन है, हील किसको करना है। हीलर जो है वो है, क्योंकि हेल्दी शब्द दो शब्दों से बना है, हील प्लस दाई, और हेल्दी को हिंदी में स्वस्थ कहते हैं, स्वस्थ। स्व शब्द जो है वो अंदर वाले मैं के लिए है, इनर सेल्फ, अंदर वाला मैं, और अस्थ मीन्स कॉन्शियस, तो स्वस्थ मीन्स इनर सेल्फ कॉन्शियस। और स्व को हम इंग्लिश में कह सकते हैं स्व मीन्स सोल एंड अस्थ मीन्स कॉन्शियस, तो हेल्दी मीन्स सोल कॉन्शियस। तो मैं जो है, अब मैं जो हूं एक बीइंग हूं, मैं एक आत्मा हूं, आई एम एनर्जी, आई एम अ पॉइंट सोर्स ऑफ एनर्जी समवेयर सिचुएटेड बिटवीन हाइपोथैलेमस विच इज द कंट्रोल रूम फॉर राइट एंड लेफ्ट ब्रेन, पूरा उसकी जो मॉड्यूलेशन जो होता है पूरे इन्फॉर्मेशन का हाइपोथैलेमस में होता है, और पूरे हार्मोनल सिस्टम, पूरा एंडोक्रिनल सिस्टम जो है, साथ हमारी ग्लैंड जो है, पिट्यूटरी पीनियल थायराइड पैराथायराइड पेनक्रियाज और एड्रिनल एंड गोनेट्स, मेल या फीमेल ग्लैंड हैं, तो इन सातों जो हार्मोनल ग्लैंड हैं इनका जो कंट्रोल रूम वो पिट्यूटरी ग्लैंड है, मास्टर ग्लैंड है। तो इनके जंक्शन पे हाइपोथैलेमो पिट्यूटरी एड्रिनल जो इसका जो जंक्शन है, कहीं आत्मा की सीट ये है, ये यहां पर आत्मा, यहां इस कंट्रोल रूम, ये यहां से आत्मा ऑपरेट करती है। ये एक पॉइंट सोर्स ऑफ सेवन स्पिरिचुअल एनर्जीज है आत्मा, जिसको इन आंखों से देख नहीं सकते, कोई मशीन से देख नहीं सकते, बट ये जो आत्मा है यहां पर जो एनर्जी है, वो एनर्जी जो है हमारी ब्रेन की 100 बिलियन न्यूरॉन्स को, पूरे सिस्टम को, पूरे बॉडी के 80,000 कोशिकाओं को पोषित कर रही है। तो हमें ये इस बात को रियलाइज करने की आवश्यकता है, आत्मा की जो सात एनर्जी है, जिसको हम, मैं इसको फार्मूलेस के नाम से आपको दे देता हूं, के पी स्क्वायर लो हाई ब्लड प्रेशर, इस सीक्वेंस में के पी स्क्वायर लो हाई ब्लड प्रेशर, दैट मीन्स के फॉर नॉलेज, नॉलेज ऑफ द ट्रूथ, दैट मीन्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ट्रूथ, देन प्योरिटी, पी फॉर पीस, पी फॉर प्योरिटी, पी फॉर पीस, एल फॉर लव, एच फॉर हैप्पीनेस, बी फॉर ब्लिस एंड पी फॉर पावर्स। तो नॉलेज से इस सीक्वेंस है, जितना अधिक अब सत्य का अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ट्रूथ, सत्य की समझ, ज्ञानवान सत्य की समझ, जितना इस सत्य की समझ का आप बार बार उसको रियलाइज करते हो, एक्सपीरियंस करते हो, उसको उसके अवेयरनेस में रहते हो, उतना अधिक आपकी, आपके अंदर प्योरिटी, आपकी मन और बुद्धि प्योर होती जाती है। और जितना अधिक आप प्योरिटी में आते जाते हो, आपका मन बुद्धि प्योर होती जाती, माइंड एंड इंटेलेक्ट आपकी प्योर होती है, उतना ही अधिक आप पीसफुल होते जाते। पीसफुल मीन्स आपके जो 90% थॉट्स कहां से आते हैं, पास्ट के साइकोलॉजिकल और इमोशनल हर्ट से आते हैं और फ्यूचर की इनसिक्योरिटी से आते हैं। जब आप सत्य ज्ञान अर्थात सत्य की समझ आपके अंदर आ जाती है, जैसे मैं एपीसीडी कह देता हूं, जब सत्य जो है, सत्य चाहे सत्य की परिभाषा क्या है, सत्य का अर्थ है, सत्य मीन्स जो कि एटर्नल है, बियॉन्ड बर्थ एंड डेथ है। दूसरा सत्य अनचेंजेबल है, वो कभी परिवर्तन नहीं होता है। तो एक इंसान का सत्य क्या है, देह हम जो सारी उम्र, सारी आयु हम अपने को देह देखते आए हैं, देह सत्य नहीं है, देह जो है एटर्नल नहीं है। देह का जन्म होता है, पांचों महीने में आत्मा गर्भ में प्रवेश करती है, मां को पता लगता है, और एक दिन आत्मा शरीर छोड़ के चली जाती है, उसको हम कहते हैं अभी ये बॉडी लेके जाओ, पेशेंट के रिलेटिव को बताते हैं बॉडी लेके जाओ, आत्मा वो तो चला गया, बॉडी लेके जाओ। तो ये जो है इसको देहांत कहते हैं। तो ये जो शरीर तो है जो एटर्नल नहीं है, ये विनाशी है, और आत्मा अविनाशी है। ओम शब्द में भी अर्थ छुपा हुआ है, ओम शब्द दो शब्द से बना है, अहम प्लस मम, अहम आत्मा मम शरीरम, मैं आत्मा हूं, ये मेरा शरीर है। तो ये हमें इसको गहराई से समझना है कि मैं एक आत्मा हूं और मैं एक बीइंग हूं और एक सुप्रीम बीइंग है। हम सब दुनिया में जितनी भी आत्माएं हैं उन सबका पिता, उनका जो फादर है, सुप्रीम फादर है, वो सुप्रीम बीइंग, या उसको हम गॉड भी कह देते हैं, परमात्मा भी कह देते हैं, अल्लाह भी कह देते हैं, वो सातों एनर्जी का पावर हाउस है। तो एक ए पी आत्मा परमात्मा कनेक्शन, अर्थात मुझे आत्मा के सर्व संबंध उस परमात्मा के साथ है, अर्थात वो सातों एनर्जी का पावर हाउस है। क्योंकि मुझे आत्मा को इस शरीर को चलाने के लिए, मस्तिष्क के 100 बिलियन न्यूरॉन्स को फंक्शनिंग, उनकी प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए, आंखों को प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए, आंख नाक कान मुख और त्वचा के प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए, हर अंग के जो 80,000 अरब कोशिका उनकी प्रॉपर फंक्शन, सातों एनर्जी की आवश्यकता है, सत्य की समझ की आवश्यकता है, प्योरिटी है ना, प्योरिटी की आवश्यकता है, पीस उसको वर्तमान में रहने की आवश्यकता है। तो जितना हम इस एपीसीडी का अनुभव, सी मीन्स कनेक्शन, अर्थात मेरे सर्व संबंध उनके साथ हैं, हम आरती में भी गाते हैं ना, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो साथी, तुम ही सहारे, कोई ना अपना सेवा तुम्हारे, अर्थात मेरे सर्व संबंध उनके साथ है। मैं सातों एनर्जी जब परमात्मा से लेता हूं संबंध के साथ, उस संबंध से मेरी प्राप्ति होती है, तो मैं अपने सारे संबंध, इस शरीर को भी अच्छे से चला पाता हूं, इस शरीर के हर अंग को मैं ठीक से सातों एनर्जी दे पाता हूं, और जो भी मेरे संबंध है, मेरे माता पिता हैं, भाई बहन है, पति पत्नी है, बच्चे हैं, वो उनको क्या चाहिए, उनको भी शांति चाहिए, प्यार, प्यार तो शांति मीन्स बीइंग इन द प्रेजेंट। तो जब आप ड्रामा डी फॉर ड्रामा था सृष्टि रूपी ड्रामा में हर आत्मा एक्टर है, हर आत्मा अपने इस जन्म और पिछले जन्मों के कर्मों के हिसाब किताब के अनुसार 100% एक्यूरेट पार्ट प्ले कर रही है, इसलिए अब तक जो कुछ भी हुआ है अच्छा हुआ है। तो जो कर्मों का हिसाब किताब है, जो भी मेरे आज मेरे माता पिता हैं जिनके घर में मैंने जन्म लिया, मैंने भोपाल में जन्म लिया, दिल्ली में जन्म लिया, या माउंट आबू में जन्म लिया, क्यों मैंने वहां जन्म लिया और उसी परिवार में क्यों जन्म लिया, ये मेरे कर्मों का हिसाब किताब उन आत्माओं के साथ है ना। तो वो मुझे जो भी मुझे अब तक मिला है वो अच्छा हुआ है, अच्छा जो मेरे कर्मों के हिसाब किताब के अनुसार मिला, कर्मों के अनुसार नहीं, कर्मों के हिसाब किताब के अनुसार। एक उसका भी इंटरेस्ट, मैंने सपोज किसी से 10 रुपया उधार लिया 100 साल पहले, अगर उसका इंटरेस्ट देखें तो उसका इंटरेस्ट बनता है 4,18,35,040 रुपया। तो मुझे वही आत्मा जिससे मैं 10 रुपया 100 साल पहले उधार लिया था, वही बच्चा मेरा इस जन्म में आकर के मेरा बेटा बन जाता है, मेरी बेटी बन जाता है, या मेरी पत्नी या मेरा पति बन जाता है, तो मुझे उतना उसको ब्याज वापस देना है। इसलिए आपने देखा कि जो हमारे पास के साइकोलॉजिकल इमोशन हर्ट्स हैं, हमारा सबकॉन्शियस माइंड उससे भरा रहता है और उसी रंग से हम वर्तमान को रंग देते हैं, और वही पास्ट का सबकॉन्शियस माइंड वर्तमान पे हावी रहता है और वही हमारे भविष्य में इनसिक्योरिटी पैदा करता है। उससे हमारी थॉट स्पीड जो कि 30 थॉट्स पर मिनट तक भी हो जाती है, और उससे हम अपने आप को हमेशा क्राउडेड महसूस करते हैं, बिजी महसूस करते हैं। और जब हम इस एबीसीडी को गहराई समझते हैं, उसको अंदर से अंडरस्टैंड करते हैं, उस समझ के साथ जीना शुरू करते हैं, तो हमारे वो थॉट जो साइकोलॉजिकल जो इमोशनल हर्ट्स हैं और साइकोलॉजिकल हर्ट्स हैं वो हील हो जाती हैं। लगभग 90% थॉट्स कट हो जाते हैं पास्ट के और भविष्य के, और वर्तमान में जीने लगते हैं, थॉट्स पे एकदम स्लो हो जाती है और हम इजी महसूस करने लगते हैं, इसी को हम शांति कहते हैं। और फिर लव मीन्स एक्सेप्टिंग पीपल एज दे आर। परमात्मा का प्यार कैसा है? अनकंडीशनल डिग्निफाइड रेस्पेक्टफुल एक्सेप्टेंस एंड केयर फॉर ईच एंड एवरी ह्यूमन बींग ऑन द प्लेनेट। हम सारे विश्व में हर आत्मा को उसके हर रोल के साथ बिना किसी शर्त के स्वीकार करें, ऐसा प्यार आपके हार्ट की आर्टरीज को चाहिए। जो आपके हार्ट की आर्टरीज के अंदर की लाइनिंग है, एंडोथीलियम जिसे कहते हैं, वो एक नाइट्रिक ऑक्साइड नाम की गैस बनाती रहती है हमेशा। वो जो है उसके कारण हमारा ब्लड आर्टरीज की दीवारों को टच नहीं करता है, और वो हमारी जो एंडोथीलियम है वो एलडीएल को अंदर नहीं जाने देती है, माइक्रोफेजेस अंदर नहीं जा पाती हैं। और जब आप जल्दी करते हैं, चिंता करते हैं, गुस्सा करते हैं, उदास होते हैं, तो ये शांति प्यार खुशी की एनर्जी खत्म हो जाती है, आनंद की एनर्जी खत्म हो जाती है, और फिर आपके अंदर वो अपने मन की बातें शेयर नहीं करते हैं। कहा भी जाता है ना, अगर दिल खोल लिया होता यारों से तो ना खोलना पड़ता औजारों से। अपने मन की टेंशन को आप अपने दोस्तों को बताएं, अपने पत्नी को बताएं, अपने बच्चों को बताएं, अपने पति को बताएं, वो शेयर नहीं करते हैं। चलो आप किसी को शेयर, इंसान को नहीं कर, भगवान को तो कर सकते हैं ना। विदेशों में लोग कुत्ते को करते हैं, तो आपको तो उसके, आपको तो भगवान, आप सब भगवान को मानते हैं, तो भगवान के नाम एक लेटर टू गॉड लिखिए, उसमें सारे सुबह से लेकर शाम तक की अपने मन की सारी टेंशन को व्यक्त कर दीजिए, अपने शरीर में जो भी परेशानी चल रही है वो व्यक्त कर दीजिए, अपने परिवार में जो टेंशन है वो लिख दीजिए, आपके प्रोफेशन में जो भी कुछ ऊपर नीचे हो रहा है, आप टेंशन फील कर रहे हैं, या आपको किसी ने कुछ कहा, या आपके द्वारा कुछ गलत हो गया, आप लिख दीजिए लेटर, साइन कर दीजिए, और साइन करके परमात्मा को सरेंडर कर दीजिए। उसका एक हॉटलाइन फैक्स नंबर है 000, मैं आत्मा 0, मेरा बाप 0, आज साल में जो बीता मल्टीप्लाइड बाय 0। तो आप देखेंगे बहुत इजी सॉल्यूशन है, जब उसको मल्टीप्लाई करते तो आपका सब कुछ 0 हो जाता है। आपकी फ्रीक्वेंसी जो कि बीटा प्लस है, सुपर बीटा, आप जानते हैं बीटा रिदम क्या 13-18 हर्ट्ज पर सेकेंड होती है, बीटा प्लस आपकी 19-30 होती है, और सुपर बीटा उससे भी अधिक होती है। जब आप गुस्सा करते हैं, एंजाइटी होती है, फियर होता है, आपके अंदर रेज आता है, आपके अंदर कोई बात की बहुत ज्यादा ईगो भर जाती है, तो आपकी फ्रीक्वेंसी बहुत फास्ट हो जाती है। आप किसी डिजायर के पीछे पागल हो जाते हैं, लस्ट के पीछे पागल हो जाते हैं तो आपकी फ्रीक्वेंसी बहुत तेज हो जाती है। तो उस फ्रीक्वेंसी को जैसे ही आप लेटर लिखते हैं उसको रियलाइज करते हैं उस मिस्टेक को, तो आपकी फ्रीक्वेंसी 35 है तो धीरे धीरे होकर वो पहले ही 10 पे आ जाती है। और जब सोने जाते हैं तो आपको बहुत अच्छी क्वालिटी की, आप डेल्टा रिदम में तुरंत चले जाते हैं, डीप स्लीप में चले जाते हैं, आपकी स्लीप फिजियोलॉजी सारी परिवर्तन हो जाती है। नहीं तो आप सो करके बिस्तर में करवटे बदलते रहते हैं, नींद की क्वालिटी अच्छी नहीं होती, तो देर से सोते हैं देर से उठते हैं। जबकि अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज इज द बेस्ट वे टू बी हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। इस बात को गहरे से आपको रियलाइज करने की आवश्यकता है कि अच्छी नींद आना भी बहुत आवश्यक है। तो इसमें हम अपने अंदर एक बायोलॉजिकल क्लॉक है, उस क्लॉक को भी हमें फॉलो करना है। तो एक जो मैंने कहा स्वस्थ, तो इनर सेल्फ कॉन्शियस होकर के मैं एक बीइंग हूं, इसको घर से रियलाइज करें, मैं परमात्मा मेरे 7 एनर्जी का जो पावर है उससे कंबाइंड होकर के वो सत्य की समझ आपके अंदर आ जाए। पवित्रता माना आप अपने को बीइंग देखें, अपने ट्रुथ को देखें, अपने सत्य स्वरूप को देखें, दूसरे के भी सत्य स्वरूप, भले आपकी पत्नी है, पति है, बच्चे हैं, उसको उस स्वरूप से देखें, उस बंधन को बंधन से ना देखें, उसको उस फ्रीडम से देखें कि ये भी एक आत्मा है जो फ्रीडम, उसको फ्रीडम है अपने कर्म करने को। वो मेरे हिसाब से कर्म नहीं करेगी, अपने कर्मों के हिसाब किताब के अनुसार कर्म करेगी। कई बार अपने बच्चों को टू मच टाइट हो जाते हैं, अपने युगल के सवाई के साथ बहुत टू मच टाइट, अपने हस्बैंड के साथ टू मच टाइट हो जाते हैं, जो कि संबंध में कड़वाहट पैदा करता है, क्रोध पैदा करता है, एंजाइटी पैदा करता है, फियर पैदा करता है। उस जब आप इस लेवल प्योरिटी इस लेवल की आती है तो आपके अंदर ऑटोमेटिक आपके अंदर पीस आने लगती है, अर्थात पास्ट की हीलिंग भविष्य की हीलिंग हो जाती है और वर्तमान में रहने लगते हैं। और सबको एक साथ जो जैसे हैं, पत्नी का अलग बिहेवियर है, बच्चों का अलग बिहेवियर है, पति का अलग बिहेवियर है, माँ का अलग बिहेवियर है, भाई का अलग बिहेवियर है, पिताजी का अलग बिहेवियर है, मेरे बॉस का अलग बिहेवियर है, कुलीग्स का अलग बिहेवियर है, सबके अपने अपने संस्कार हैं। कि तो उनको जो जैसे उनको स्वीकार करना ही सच्चा प्यार है, और यही प्यार आपके हार्ट को चाहिए। जब आप सबको स्वीकार, तो आप क्रोध आना बंद हो जाता है, आपको प्रेशर्स में रहना बंद कर देते हैं, अपने मन की बातें शेयर करना शुरू कर देते हैं परमात्मा को और अपने फ्रेंड्स को, अपने अपने स्पाउस को भी शेयर करना, तो आपके अंदर वेंटिलेशन अच्छा होने लगता है और आपकी एंडोथेलियम वापस से नाइट्रिक ऑक्साइड बनाना शुरू करती है और रिवर्स कोलेस्ट्रॉल ट्रांसपोर्ट होना शुरू हो जाता है, आपके ब्लॉकेजेस खुलने लगते हैं, आपका खून जो है जो टेंडेंसी टू मेक क्लॉट्स थ्रोम्बस वो टेंडेंसी खत्म हो जाती है, आपका जो प्लाक क्रैक होने की टेंडेंसी खत्म हो जाती है, आपकी जो फाइब्रस कैप है वो वापस अच्छे से बनने लगती है, तो आपके बल्कि प्लाक्स रिग्रेस होने लगते हैं। तो इस तरह से जब आप करते हैं तो आपके प्लाक्स रिग्रेस हो जाते हैं और आपकी जो है टेंडेंसी फॉर क्रैक आर्टरी वो जो अंदर से प्लाक क्रैक हो या अल्सरेट वो खत्म हो जाता है, तो आपको हार्ट अटैक होने के चांस ही खत्म हो जाते हैं और कोलेटरल बहुत अच्छे खुल जाते हैं, नेचुरल बाईपास हो जाता है, तो आपको हार्ट अटैक होने के चांसेस बंद हो जाते हैं। अब जब अपने को जब आप ऐसे सबको प्यार करने लगते हैं तो आपके अंदर कंटेंटमेंट आने लगती है, आप स्वयं से खुश रहने लगते हैं, परमात्मा ये भी फील करते हैं परमात्मा भी मुझसे खुश है, आप संसार रूपी नाटक से भी खुश रहने लगते हैं और अपने परिवार से भी खुश रहने लगते हैं। तो क्या होता है आपके अंदर संतुष्टता आती है, ये आपके अंदर एक खुशी की पैदा कर, अंदर की खुशी, इसको हम अतिंद्रिय सुख कहते हैं, सुपर सेंस ऑफ जॉय की फीलिंग देती है, जिससे आपका लीवर ज्यादा मात्रा में एचडीएल बनाने लगता है और ट्राइग्लिसराइड कम बनने लगते हैं, एलडीएल कम बनने लगता है, आपके आपके आंतों में जो आईडीएम में जो इंटेस्टाइनल रिसेप्टर्स हैं वो एक्टिव हो जाते हैं और आपका जो डाइट है शुद्ध सात्विक आहार, लो फैट हाई फाइबर वेजिटेरियन बैलेंस डाइट लेना शुरू करते हैं, उससे भी आपके रिसेप्टर्स ठीक होने, समय पर अपनी बायोलॉजिकल क्लॉक के अनुसार लेना शुरू करते हैं भोजन और सुबह पेट साफ करने के बाद, स्नान करने के बाद सनराइज के साथ 45 मिनट्स टू 1 आवर आप मेडिटेटिव वॉक करते हैं, सातों गुणों का अभ्यास करते हुए, सातों एनर्जी का अभ्यास करते हुए करते हैं, तो आपके अंदर ये भी एक मेडिटेटिव वॉक है जो आपकी लाइफ को, आपके जो जितने भी जो अंदर जो फ्री रेडिकल्स हैं सेल्स के अंदर वो वॉश आउट हो जाते हैं और फिर समय पर वेंटिलेशन करके लेटर लिख के बताया मैंने, और थोड़ा 3 मिनट मेडिटेशन करके जब सो जाते हैं अर्ली टू बेड, 10 बजे सो जाएं, सुबह 4 बजे उठ जाएं, ब्रह्म मुहूर्त में आधा घंटा जब मेडिटेशन करते हैं और 8 बजे तक आप चुप रहते हैं, पॉजिटिव टीम जिसको हम परमात्मा के महावाक्य मुरली कहते हैं उसका मनन चिंतन, वो 100% मुरली परमात्मा के महावाक्य 100% पॉजिटिव टीम है, तो आपका कॉर्टिसोल सर्ज बैलेंस में होता है जिससे आपका सारा दिन शांत लवफुल और खुशी से बीतता है, आपकी इफिशियंसी बढ़ जाती है, आपकी टीम आपको 8 बजे तक पॉजिटिव रखनी है। तो इस तरह से आप तीनों लेवल पे सोल माइंड बॉडी 4 से 5 के बीच में आधा घंटा मेडिटेशन किया, आनंद का अनुभव किया, 18 हार्मोन्स पिट्यूटरी पीनियल और हाइपोथैलेमिक फैक्टर्स बैलेंस में निकल गए और फिर आपने 8 बजे तक टीम को पॉजिटिव रखा, نیگیٹو ٹیم کو آنے نہیں دیا, نیگیٹو تھاٹس, نیگیٹو ایموشنز, نیگیٹو ایٹیٹیوڈ, نیگیٹو میموریز کو نہیں آنے دیا, اس کی بجائے آپ نے پازیٹیو ٹیم کو اندر آنے دیا, تو آپ کی وہ ٹیم اندر آنے سے, پازیٹیو آنے سے آپ کی انرجی جو ہے, ساتوں انرجی آپ کی سیلز میں آ گئی, اور پھر آپ نے پراپر ڈائٹ, لو فیٹ, ہائی فائبر, ویجیٹیرین بیلنس ڈائٹ, جسے ہم شدھ ساتوک آہار, سات گنوں کو بڑھانے والے, اس میں زیادہ ماترا میں پھل, سلاد, سیلڈس مطلب اور انکرت اسپراؤٹس, سبزی اور چپاتی, اور پریفرلی گیہوں چنے کی, سو دیٹ کوالٹی آف کوالٹی گڈ, یو گیٹ گڈ کوالٹی پروٹینس. 6 کلو گیہوں, 2 کلو چنا, اس ریشو میں آٹا پسوا کر کے آپ اس کو یوز کرتے ہیں, اور اچھے سے چبا چبا کھانا کھاتے ہیں. صبح 8-9 کے بیچ میں بریک فاسٹ, لنچ 1-2 کے بیچ میں, ڈنر شام کو 6-7 کے بیچ میں کر لیتے ہیں, ارلی ڈنر کر لیتے ہیں, اور 9-10 بجے تک سو جاتے ہیں. تو یہ آپ کے اندر کی جو کلاک ہے اس کے انوسار کاریہ کرتے ہیں. تو آپ کی جو پوری ایک لائف اسٹائل, جسے کہتے ہیں ہم ویوہار آہار وہار, ویوہار بدلیے اپنے ساتھ. کئی لوگ دوسروں کے ساتھ بہت اچھا ویوہار کرتے ہیں, اپنے ساتھ بہت اپنے آپ کو ٹارچر کرتے ہیں, اپنے ساتھ بھی شانتی, پیار, خوشی کا ویوہار رکھیں. اپنے آپ کو بھی پیار, اندر سے بھی شانت رہیں, باہر سے بھی شانت رہیں, خود کو بھی پیار کریں, ارتھات اپنے آپ کو بھی ایکسیپٹ کریں, دوسروں کو بھی ایکسیپٹ کریں, اور خوش اندر سے بھی سنتوشٹ رہیں, دوسروں کو دوسرے سے سنتوشٹ رہیں, تو آپ دیکھیں گے آپ کی کوالٹی لائف بہت اچھی ہو جاتی ہے. اس طرح سے جب اپنے آپ کو ویوہار کریں گے, اور آہار اپنا شدھ ساتوک آہار, جو آپ کی ساتو انرجی کو بڑھانے والا آہار ہو نا, پراٹھا, پکوڑا, سموسا, نان ویج, سوری جو اپنا جو کھاتے ہیں, فرائڈ, فاسٹ اینڈ جنک فوڈ, یہ آپ کی انرجی کو زیادہ یوز کرتا ہے, آپ کو مشکل ہوتا ہے پچانا, اور بلکہ آپ کی آنتوں کے ریسیپٹرز کو خراب کر دیتا ہے, اس سے آپ کے اندر لیزینس اور کیئر لیسنس آتی ہے, اور تامسک آہار جو ہوتا ہے وہ آپ کے اندر اتیجنا پیدا کرتا ہے. جیسے کہ آپ نان ویج کھاتے ہیں, بہت ٹی اور بہت کافی, کولڈ ڈرنکس بہت زیادہ یوز کرتے ہیں, بہت مسالے یا اچار وغیرہ سیون کرتے ہیں, لہسن پیاز سیون کرتے ہیں, تو اس سے آپ کے اندر آپ کی جو سمپیتھک سسٹم ایکٹیو ہو جاتا ہے, اور اس سے آپ بہت ایزیلی مطلب آپ کو انزائٹی, فیئر, اینگر, ڈپریشن, کارٹیزول لیولز بڑھ جاتے ہیں, اور آپ کی پھر یہ پرابلم شروع ہونے لگتی ہیں, آپ کو اسٹریس لیول بڑھتا ہے, اور پھر آپ اس کے ایک چکروی میں, فیشیس سائیکل میں پھنس جاتے ہیں. تو یہ آہار اور وہار, وہار میں پانچ باتیں آتی ہیں. ایک تو آپ کا آبھا منڈل, جتنا آپ جو آپ کا چنتن ہوتا ہے اس سے آپ کا آبھا منڈل بنتا ہے, وایو منڈل بنتا ہے, اورا بنتا ہے. تو آپ کا چنتن اگر پازیٹیو ہے, اگر ستیہ کا اے پی سی ڈی کا چنتن ہے, ستیہ کا چنتن ہے, تو آپ کے آس پاس شانتی, پیار, خوشی کی انرجی جمع ہو جاتی ہے, جو کہ آپ کا شیلڈ بن جاتی ہے, ایک کوچ بن جاتا ہے, اور پھر آپ کا سنگ, ایسے جیسے آج کل واٹس ایپ, فیس بک, آپ بہت زیادہ سوشل میڈیا سے ٹو مچ آپ کو انفارمیشن ملتی رہتی ہے, جو کہ غلط انفارمیشن ہوتی ہیں, آپ کو من کو وچلت کرتی ہیں, انزائٹی, فیئر پیدا کرتی ہیں, اریٹیٹ کرتی ہیں, ڈپریشن پیدا کرتی ہیں, اس کو چھوڑ کے ایک پازیٹیو اپنے آپ کو انرجی دیجئے, سنگ اچھی چیزوں کریے, ستیہ کا سنگ کریے, جو میں نے بتایا پرماتما کا سنگ, اور مرلی جو پرماتما کے ماں باپ کے مرلی کا سنگ کریں, اور پھر نیند اچھی کریں, نیند بھی سمے پر سو جائیں, سمے پر اٹھ جائیں, ہے نا, ارلی ٹو بیڈ, ارلی ٹو رائز, اور پھر جو ہے آپ سیر, میں نے بتایا 45 منٹس ٹو 1 آور مارننگ میں ود سن رائز آپ سیر کریں, اور میڈیٹیٹو واک کریں, سائلنس میں رہ کے باتیں اور ٹاکنگ اینڈ واکنگ مکس نہ کریں, اور پھر اس طرح سے آپ اگر کرتے ہیں تو آپ دیکھیں گے آپ کی کوالٹی آف لائف, آپ کی جو ہے یہ پوری کی پوری ہارمنی اندر سے پیدا ہو جاتی ہے. ایڈکشن اسموکنگ اور شراب یا اور بھی کچھ ایڈکشنز کچھ لوگ لے کرتے ہیں, ان سے بچیں, ٹو مچ ٹی کافی سے بچیں, تو جتنے بھی اسٹیمولینٹس لینے کی آوشکتا ہی نہیں ہے. اگر آپ سول کانشیس رہیں گے تو ان آتما کے سات گن جو بتایا میں نے آپ کو, کے پی اسکوائر, لو ہائی بلڈ پریشر, گیان, پویترتا, شانتی, پریم, سکھانند, اور شکتیاں, آٹھوں شکتیاں جو آپ کے اندر آ جائیں گی, تو آپ کے اندر آپ اسٹریس فری ہو جائیں گے, آپ پھر ہیلدی فوڈ کھائیں گے, نیند اچھی کوالٹی کی آئے گی, سیر کرنے کے لیے آپ دل کرے گا, اور یو ول بی ایبل ٹو سے نو ٹو اسموکنگ اینڈ الکوہول اینڈ ادر ٹائپس آف ایڈکشن. آپ کی کوالٹی, آپ ہیلدی لائف, آپ کی اپنے آپ ہیلدی اینڈ ہیپی لائف ہو جائے گی, آپ کا ہارٹ بھی, آپ کا جو تھری ڈائمینشنل ہیلتھ کیئر لائف اسٹائل فار ہیلدی ہارٹ, ہیپی مائنڈ, ہیلدی باڈی آپ ہی بن جائے گا. آپ سول, مائنڈ, باڈی تینوں کو, تینوں ہی نرش ہو جائیں گے, تینوں انرجی کی ہارمنی ہو جائے گی, اس سے آپ کا ہارٹ تو ہیلدی ہو ہی جائے گا, من سدا خوش نما رہے گا, اور آپ کی شریر کے پورے سیلس بھی, آپ کے جو بھی شریر اور من اور تن کی بیماریاں, وہ سب اپنے آپ ہی آپ سے نمسکار کر کے ودا لے لیں گے. اوم شانتی. ابھی ہم کچھ منٹ आप मेरे साथ, आप सभी अलर्ट होकर बैठ जाएं जहां पर भी आप हैं। हम लगभग 5 से 7 मिनट अपने हार्ट को हेल्दी बनाने के लिए हम कौन सा मेडिटेशन करें, अपने मन को खुशनुमा बनाने के लिए कौन सा मेडिटेशन करें, अपने शरीर की सभी 8 अंगों को, ऑर्गन सिस्टम्स को नरिश करने के लिए क्या मेडिटेशन करें। मेडिटेशन शब्द, जैसे मैंने कहा, मेडिटेशन और योग और मेडिटेशन मीन्स कनेक्शन, योग मीन्स कनेक्शन एंड मेडिटेशन और कनेक्शन, मेडिटेशन ऑल्सो मीन्स द सेम। कनेक्शन विद व्हाट? कनेक्शन विद द ट्रूथ। और ट्रूथ क्या है? मैंने बताया ABCD, आत्मा परमात्मा, आत्मा परमात्मा के संबंध और ड्रामा, संसार रूपी ड्रामा, कर्म फिलोसॉफी क्या है। तो आप गहराई से अनुभव करेंगे उन सातों एनर्जी का, गहराई से अनुभव करेंगे। चलिए हम चलते हैं अंतर जगत की यात्रा पर। अनुभव करें, मैं स्थूल देह नहीं, स्थूल देह को चलाने वाली अति सूक्ष्म चैतन्य ज्योति बिंदु आत्मा, 7 चैतन्य आत्मिक ऊर्जाओं का पुंज हूं। मैं अति सूक्ष्म चैतन्य ज्योति बिंदु आत्मा, 7 चैतन्य आत्मिक ऊर्जाओं का पुंज, परमधाम निवासी अति सूक्ष्म परम चैतन्य परम ज्योति बिंदु, 7 चैतन्य आत्मिक ऊर्जाओं के पावर हाउस, परम पिता परमात्मा शिव की संतान। अनुभव करें, मैं 7 चैतन्य आत्मिक ऊर्जाओं का पुंज, दोनों भुक्टों के मध्य, राइट और लेफ्ट ब्रेन के कंट्रोल रूम, हाइपोथैलेमस एवं पिट्यूटरी के जंक्शन पर उपस्थित 7 चैतन्य आत्मिक ऊर्जाओं का पुंज, परमात्मा पिता जो कि 7 चैतन्य आत्मिक ऊर्जाओं के पावर हाउस हैं, सागर हैं, ओशियन हैं, उनसे कंबाइंड हूं। और इन 7 चैतन्य आत्मिक ऊर्जाओं से मैं आत्मा अपनी तीनों सूक्ष्म शक्तियों, बुद्धि मन अर्थात टीम, थॉट्स इमोशंस एटीट्यूड्स एंड मेमोरीज और पुरानी संस्कार अर्थात हैबिट्स को नरिश कर रही हूं। बुद्धि में मेरी बुद्धि, मेरा मन और मेरे संस्कार, मैं इन सातों चैतन्य आत्मिक ऊर्जाएं अर्थात सत्य की समझ, पवित्रता, शांति, अर्थ सहित महसूस करें बुद्धि में, मन में और अपनी हैबिट्स में, इन सातों एनर्जी को की महसूसता करें। सत्य एवं निस्वार्थ प्रेम, अतीन्द्रिय सुख आनंद और अशक्तियां से भरपूर अनुभव करें। मस्तिष्क की 100 अरब कोशिकाएं, हर कोशिका में ये मैसेज जा रहा है कि मैं स्थूल देह नहीं, इस स्थूल देह को चलाने वाली अति सूक्ष्म चैतन्य ज्योति बिंदु आत्मा, 7 चैतन्य आत्मिक ऊर्जाओं का पुंज, 7 चैतन्य आत्मिक ऊर्जाओं के पावर हाउस, परमपिता परमात्मा शिव की संतान, उनसे कंबाइंड हूं। हर न्यूरॉन में ये एनर्जी को महसूस करें, इन सातों एनर्जी को। मैं आत्मा हूं, परमात्मा की संतान हूं, मुझे आत्मा के सर्व संबंध परमपिता परमात्मा शिव से हैं, जो 7 चैतन्य आत्मिक ऊर्जाओं के पावर हाउस हैं। परमपिता परमात्मा शिव अव्यक्त ब्रह्मा के माध्यम से मुझे माता पिता टीचर सतगुरु बंधु अर्थात बड़ा भाई सखा अर्थात दोस्त साजन अर्थात मोस्ट बिलवेड सर्जन एवं बच्चा बेटा या बेटी की मुझे आसना दे रहे हैं पालना दे रहे हैं और शिष्य रूपी ड्रामा में अब तक जो कुछ भी हुआ है वो मेरे अपने कर्मों के हिसाब किताब के कारण हुआ है, इसलिए अब तक जो कुछ हुआ अच्छा हुआ है, जो हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है। अब ये मुझे समझ आ गई है, सत्य की समझ मुझे आ रही है, तो इसलिए अब जो होने वाला है वो बहुत अच्छा होने वाला है, जैसा बीज वैसा फल। गहराई से हर ब्रेन की हर सेल में अनुभव करें ये इंफॉर्मेशन को, ये नई इंफॉर्मेशन अपने कंप्यूटर को रीफॉर्मेट कर दें। मेरे साथ अभी तक कुछ गलत नहीं हुआ है, जो हुआ अच्छा हुआ है, अब जो हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है और जो होने वाला है वो सबसे अच्छा होने वाला है। और इससे अपने अंदर प्योरिटी को महसूस करें, पवित्रता को महसूस करें। थॉट स्पीड मेरी वर्तमान में ही रह गई है, पास्ट के थॉट्स हील हो गए हैं, भविष्य के थॉट्स आने बंद हो गए हैं, इनसिक्योरिटी खत्म हो गई है। अब मैं अपने जीवन संतुष्ट हूं अर्थात खुश हूं, अंदर उस अंदर के सुख को, अंदर के जॉय को आप फील करें, अतिद्र सुख को आप अनुभव करें। और मैं आत्मा इस देह से अलग हूं, एटर्नल हूं, बियॉन्ड बर्थ एंड डेथ हूं, इस आनंद को अनुभव करें। अनुभव करें इस एनर्जी को अपनी आंखों में, नाक कान मुख और त्वचा में, अपने हार्ट की आर्टरीज के एंडोथीलियम में, अंदर की लाइनिंग में, और अनुभव करें कैसे वो वापस नाइट्रिक ऑक्साइड गैस रिलीज हो रही है और मेरा कोलेस्ट्रॉल के जो पार्टिकल्स, एलडीएल के जो पार्टिकल्स, जिससे मेरा जो हार्ट की आर्टरीज में प्लाक जो कोलेस्ट्रॉल जमा हो गया था वो कैसे बाहर मूव कर रहा है। और कैसे मेरे प्लाक्स रिग्रेस होते जा रहे हैं, कैसे मेरे ब्लॉक्स रिग्रेस होते जा रहे हैं। खाली हार्ट के नहीं, गर्दन की आर्टरीज में भी जो ब्लॉक्स हैं, ब्रेन की आर्टरीज में भी जो ब्लॉक्स हैं, और भी जो मेरे मेरा जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है जहां पर भी मेरे ब्लॉक्स हैं वो भी रिग्रेस होते जा रहे हैं। खुशी की एनर्जी से महसूस करें लीवर में कैसे मेरे एचडीएल गुड कोलेस्ट्रॉल बनता जा रहा है, और आंतों के रिसेप्टर्स भी एक्टिव होते जा रहे हैं। अपने हार्मोन सिस्टम को भी एक्टिविटी, आनंद की स्थिति से अपने हार्मोन सिस्टम को भी एक्टिवेट करें, हार्मोनाइज सारे सिक्रीशन, सभी सातों ग्रैंड्स के हार्मोन्स कैसे हार्मोनाइज हो गए हैं। जैसे अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी, मेंटल एनर्जी, अपनी पॉजिटिव टीम, सात एनर्जी का पावर हाउस, और अपनी टीम को पॉजिटिव, और अपने फिजिकल एनर्जी, साथ में शुद्ध सात्विक आहार, शुद्ध सात्विक सैर, शुद्ध सात्विक नींद और प्रॉपर दवाइयां, डॉक्टर का जो प्रेस्क्रिप्शन है उसको भी बहुत प्यार से मैं सेवन करता हूं, सेवन करती हूं। तो तीनों एनर्जी की हार्मनी से मेरे आसपास एक आभा मंडल का निर्माण होता जा रहा है, जिसमें सत्य की समझ है, पवित्रता की एनर्जी है, शांति के प्रकंपन है, सत्य एवं निस्वार्थ प्रेम की खुशबू है, अतिंद्रिय सुख की झलक है, आनंद की फलक है और सर्व शक्तियों की का तेज है। बार बार जब भी आपको दिन में समय मिले, आप इस ड्रिल को, ये एक मिनट में ड्रिल हो सकती है, अपने को आत्मा से रियलाइज करते हुए, एक चमकता हुआ सितारा अनुभव करते हुए, मस्तक के मध्य में और परमात्मा पिता से एक सेकंड में कंबाइंड हो जाए पावर हाउस से, और अपनी टीम को पॉजिटिव बनाएं, क्योंकि टीम से ही आत्मा मन की पॉजिटिव टीम के थ्रू ही शरीर के आठों अंगों को एनर्जी देती है, सातों एनर्जी से पोषित करती है। मन माध्यम है, मन अगर पॉजिटिव है तभी एनर्जी हमारे शरीर की सेल्स में जा सकती है। अगर मन हमारा नेगेटिव है, टीम नेगेटिव है, तो हमारी एनर्जी ब्लॉक हो जाते हैं। तो टीम को पॉजिटिव बनाने के लिए जो परमात्मा के महावाक्य हैं, मुरली जिसे कहते हैं, उसको ऑनलाइन अवेलेबल है, आजकल यूट्यूब पे अवेलेबल है, डेली की मुरली अवेलेबल है। ये 100% पॉजिटिव टीम है, उसका मनन हमारा सारे बार बार रिवाइज करें, चिंतन गहराई में जाएं, मंथन करें कि मुझे ऐसे कैसे बनूं मैं, ऐसा कैसा मेरा जीवन बन जाए, और सिमरन अर्थात कार्य करते हुए उसको कार्य में लगाते रहें, कार्य में प्रैक्टिकली, क्योंकि सुनना सुनाना नहीं है हमको, अब बनना है, ऐसा बनना है। जब हम ऐसा बन जाएंगे तो हम स्वस्थ अर्थात सदा के लिए सोल कॉन्शियस हो जाएं, सदा सोल कॉन्शियस रहेंगे तो हम ऑटोमेटिकली स्वस्थ रहेंगे, हमारा हृदय भी स्वस्थ रहेगा, मन सदा खुशनुमा रहेगा, और हमारा शरीर भी, आठों अंग भी स्वस्थ रहेंगे। और जो थोड़ी सी दवाई लेनी है, धीरे धीरे आप देखेंगे आपकी दवाइयां भी कम होती जाएंगी, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज या हार्ट की या जीआरडी की, अस्थमा की दवाई धीरे धीरे कम होती जाएंगी, और डिप्रेशन खत्म हो जाएगा, नींद अच्छी आने लगेगी, आप एकदम स्वस्थ और खुशनुमा अनुभव करेंगे। ओम शांति।
नमस्कार। आज मुझे टॉपिक मिला है कैंसर प्रिवेंशन। जब हम कैंसर की बात करते हैं तो कई लोगों को बहुत ज्यादा डर व्याप्त हो जाता है और बड़े नेगेटिव थॉट आने लगते हैं। कई लोग ये समझते हैं कैंसर यानी कैंसिल, अगर किसी व्यक्ति को कैंसर हुआ है तो शायद अब कुछ समय का मेहमान है, लेकिन ऐसा नहीं है। कैंसर एक क्यूरेबल बीमारी है जो समय रहते हुए अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट लेते हैं तो ठीक हो जाती है। जब मैं मॉर्निंग में मेडिकल कॉलेज अपनी ओपीडी जाता हूं तो देखता हूं कैंसर के पेशेंट बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, मुझे पैर रखने की जगह भी नहीं मिलती। जब मैं उनसे बात करता हूं, डिस्कस करता हूं, और मैं जानने की कोशिश करता हूं कि इनको कैंसर क्या हुआ, तो बहुत सारी चीजें मुझे पता पड़ती हैं और मुझे पता लगता है कैंसर को हम रोक सकते हैं। जो कैंसर का एक सबसे बड़ा कारण है टोबैको, अगर हम उसका कंजम्पशन रोक दें तो करीब करीब हमारे क्षेत्र में, कुछ कारण अलग अलग जगह अलग अलग हो सकते हैं, तो करीब 70-80% कैंसर को हम रोक सकते हैं, कई जगह 30% कैंसर को रोक सकते हैं। आज कैंसर तेजी से बढ़ती हुई बीमारी है। WHO 12 सितंबर 2018 में जिनेवा से गजट बताया था, और उन्होंने बताया कि मृत्यु का दूसरा बड़ा कारण है कैंसर। सबसे पहला कारण है आज कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, उसके बाद अगर कोई कारण है तो वो है कैंसर। 2018 में ग्लोबली अगर बात करें तो करीब 18 मिलियन न्यू कैंसर के पेशेंट डिटेक्ट हुए, जिसमें से करीब 9.5 मिलियन कैंसर पेशेंट की डेथ हुई, और उसमें जो 50-60% डेथ थी वो लो और मिडिल सोशो इकोनॉमिक कंट्रीज की थी। तो आप सोचिए कैंसर की स्थिति कितनी भयावह है। अगर हम भारतवर्ष की बात करें तो ICMR की नेशनल कैंसर रजिस्ट्री प्रोग्राम है, उसके अंतर्गत बताया 2018 में करीब 11 लाख न्यू कैंसर पेशेंट डायग्नोज हुए, और उसमें से करीब 7.5 लाख कैंसर पेशेंटों की डेथ हुई। एक समय में करीब 2.5 मिलियन कैंसर के पेशेंट रहते हैं। भारत में स्थिति थोड़ी सी और ज्यादा खराब है। भारत में हर 8 मिनट में एक महिला की मृत्यु सर्वाइकल कैंसर, बच्चादानी के मुख्य कैंसर के कारण हो रही है। ब्रेस्ट कैंसर की अगर 2 महिला डिटेक्ट होती है तो 1 साल के अंदर 1 महिला की मृत्यु हो जाती है। कैंसर की स्थिति भारत में अच्छी नहीं है। 2012 जो आईसीएमआर की स्टडी थी उसमें बताया 2012 से 14 में करीब 6% कैंसर की मोर्टलिटी बढ़ी है। WHO ने देखा कि कैंसर का मुख्य कारण क्या है, तो उन्होंने 5 मुख्य कारण बताए हैं। जो कारण है बिहेवियर और डाइटरी हैबिट, हमारी व्यवहार से और हमारे खान पान से संबंधित है। सबसे पहला जो कारण बताया है हाई बॉडी मास इंडेक्स, दूसरा कारण बताया है लो फ्रूट एंड वेजिटेबल इंटेक, तीसरा कारण था लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, चौथा टोबैको और पांचवा एल्कोहल। ये मुख्य कारण अगर आप समझ रहे हैं तो आपको पता लग रहा है ये मुख्य कारण ये ऐसे हैं कि जिनको हम परिवर्तित कर सकते हैं। अगर जिन पर हमने कंट्रोल कर लिया तो कैंसर जैसी घातक बीमारी को भी हम रोक सकते हैं, क्योंकि कैंसर एक बार होने के बाद फाइनेंशियल वर्डन, सोशल वर्डन, मेंटल वर्डन, बहुत सारे वर्डन हमारे बीच में आते हैं। इस बीमारी को रोकना ही एक हमारे बीच में सबसे बड़ा हथियार है। तो हम सबसे पहले बात करेंगे बिहेवियर चेंजेस की। बिहेवियर एक सबसे बड़ा कारण WHO ने बताया। बिहेवियर यानी क्या, बहुत सारी स्टडीज मैंने अभी लॉकडाउन था तो रिसेंट में मैं पढ़ी, क्योंकि मेडिकल साइंस में हमको ड्रग पढ़ाते हैं, ट्रीटमेंट पढ़ाते हैं, कीमोथेरेपी, सर्जरी, रेडिएशन पढ़ाते हैं। बिहेवियर टाइप की स्टडी हमारे मेडिकल साइंस में कम है। बहुत सारी मैं स्टडी पे गया, उसमें देखा गया कि सोशल आइसोलेशन, स्ट्रेस, डिप्रेशन, मेजर ट्रॉमा, आपके कोई लाइफ में ऐसा इवेंट हुआ है, इसको लेकर जब हमारे मन पे इम्पैक्ट पड़ता है तो वो कैंसर को पैदा करने का एक बहुत बड़ा कारण बनता है। पैदा करने के साथ में अगर ऐसे व्यक्ति में डिप्रेशन होता है, भय की भावना होती है, तो कैंसर भी उनके शरीर में लंबे समय तक रहता है। मैंने देखा कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी भी ज्यादा लंबे समय तक वर्क नहीं करती। ऐसे जो पेशेंट रहते हैं जो लगातार डिप्रेशन में है, आइसोलेशन में है, अपने आप को लो फील करते हैं, अपने मन को एम्प्टी फील करते हैं, ये फिर व्यसन में भी चले जाते हैं, जो भी एक बहुत बड़ा कारण इसके साथ बन जाता है। और जो सबसे बड़ा व्यसन हमारे बीच में आता है जो बहुत इजीली अवेलेबल है, टोबैको। टोबैको की अगर बात करें तो करीब भारत में 3500 लोग हर साल टोबैको के कारण मर जाते हैं। ये युवाओं में नंबर वन कारण है डेथ का। अगर हम जितने भी डेथ के हम कारण को निकाल लें, एक्सीडेंट, सुसाइड, लड़ाई है, डिसीज, उसमें नंबर वन कारण आता है डेथ का टोबैको, जो युवाओं का नंबर वन कारण है। मैंने अभी एक अमेरिकन स्टडी पढ़ी, उसमें देखा कि टोबैको के अंदर 7000 केमिकल्स होते हैं, जिसमें 70 केमिकल्स कार्सिनोजेनिक होते हैं, और जो सबसे बड़ी सब्सटेंस होता है टोबैको में निकोटिन, जो एडिक्शन प्रोड्यूस करता है। टोबैको को हम कई रूप में सेवन करते हैं, च्यूइंग के रूप में, स्मोकिंग के रूप में, स्मोकलेस टोबैको भी होते हैं, स्मोकलेस ई सिगरेट भी आजकल आने लगी, फिर कई चीजों में डाल के, जैसे पान में डाल के, खैनी में डाल के, फिर नसमंजन के रूप में, कई अलग अलग वेराइटी है टोबैको च्यूइंग करने की, टोबैको कंज्यूम करने की। जो भी वेराइटी टोबैको को सेवन करने की है वो सब हानिकारक है और कुछ ही समय के पश्चात कैंसर को पैदा कर देती है। और टोबैको का जो सबसे बड़ा कारण, जब हम उनसे बात करते हैं कि भाई आप टोबैको में क्यों गए, कई पुरुष और कई महिलाएं ऐसी आती हैं, रूरल एरिया की महिलाएं आती हैं जो नसमंजन करती हैं, जब उनसे बात करते हैं तो उनको पता ही नहीं होता कि ये कैंसर को पैदा करता है। तो आज सबसे बड़ी जो इस 5 बिहेवियर के बाद WHO ने बताया और क्या कारण है जिनको हम रोक सकते हैं, कैंसर को रोक सकते हैं, तो फिर बात आई कैंसर स्क्रीनिंग की और कैंसर अवेयरनेस की। जितना हम अवेयरनेस क्रिएट करेंगे और स्क्रीनिंग करेंगे और अर्ली डिटेक्शन कर लेंगे तो कैंसर उससे भी रुक सकता है, क्योंकि कैंसर में एक प्री मेलेग्नेंट कंडीशन होती है। अगर हमने उस समय कैंसर को डिटेक्ट कर लिया तो हम कैंसर को रोक सकते हैं। फिर बात आती है बिहेवियर के बाद डाइटरी हैबिट की। आज डाइट हमको ये नहीं पता हमें क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। हम इंटेस्टाइन को GIT बोलते हैं, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट बोलते हैं। इसको अगर थोड़ा सा हम अभ्रंश में कर दें तो गट बोलते हैं, गट यानी गटर, जैसे गटर होता है उसमें कुछ भी डालते रहते हैं। लेकिन ये हमारा कितना इम्पोर्टेंट चीज है जिससे हमारी शरीर बनना है, हम क्या खाते हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है। WHO ने बोला कैंसर का कारण है लो वेजिटेबल और फ्रूट इनटेक। तो हमें क्या करना है, हमें खाने में वेजिटेबल्स और फ्रूट का रेशो बढ़ाना है। जो भी हम खाना खाते हैं उसमें फ्रूट्स बढ़ाने हैं। अब कई लोग बोलते हैं फ्रूट्स बड़े महंगे होते हैं, अवेलेबल नहीं होते हैं, तो जो सीजनल फ्रूट्स होते हैं उनका हमें सेवन करना चाहिए। सीजनल फ्रूट बहुत सस्ते होते हैं। आज हम देखें, सिंपल सी बात करें, आप घर से अपने ऑफिस के लिए निकलिए तो कितने आपको रेस्टोरेंट मिलेंगे, कितनी दुकानें मिलेंगी और कितने आपको ठेले मिलेंगे जहां पर फ्रूट्स मिल जाते हैं। फ्रूट्स बहुत इजीली अवेलेबल चीज है। हमें लगता है कि फ्रूट्स मिलते नहीं है, बहुत सारे फ्रूट्स अवेलेबल हैं जो मौसम के, जो सीजनल फ्रूट्स होते हैं, बनाना है, पपाया है, एप्पल है, अमरूद है, बहुत सारे ऐसे फ्रूट मिलते हैं जो सीजन में आते हैं और बहुत सस्ते होते हैं। एक समोसा से ज्यादा सस्ता हमें फ्रूट्स मिल जाते हैं। हम जितना अगर ब्रेकफास्ट में हम बाहर निकलते हैं, कई बार घर पे नहीं खाते हैं, हम बाहर जाके होटल में ब्रेकफास्ट लेते हैं, खाना खाते हैं, अगर आप देखें उससे सस्ते फ्रूट्स मिल जाते हैं। ये भ्रांति है कि फ्रूट्स महंगे होते हैं, फ्रूट्स अवेलेबल नहीं होते, और फ्रूट सबसे ज्यादा ठेले मिल जाते हैं। आप अगर घर से निकले तो जितने आपको रेस्टोरेंट नहीं मिलेंगे, जितने आपको खोमचे वगैरह नहीं मिलेंगे, उससे ज्यादा आपको फ्रूट्स के ठेले मिल जाएंगे। तो हमें क्या करना है, सिंपल, हमें खाने में फ्रूट्स का यूज ज्यादा करना है, वेजिटेबल्स का यूज ज्यादा करना है। वेजिटेबल का यूज हम कर सकते हैं, सैलेड के रूप में कर सकते हैं, हम खाने के पहले सैलेड्स खाएं, जितने भी वेजिटेबल्स आते हैं हम उनको सैलेड के रूप में यूज कर सकते हैं। टमाटर है, पत्ता गोभी है, खीरा है, ककड़ी है, कैबेज है, बहुत सारी ऐसी वेजिटेबल्स आते हैं जिनको हम सलाद के रूप में यूज कर सकते हैं। वास्तव में इसका साइंटिफिक यूज क्या है, ये हमारे हाई फाइबर डाइट होते हैं, ये हमारे पाचन को इम्प्रूवमेंट करते हैं, इंटेस्टाइन का ट्रांजिएंट टाइम हमारा कम कर देते हैं। जितना ट्रांजिएंट टाइम फूड का कम होता है उतना वो फूड हमारे इंटेस्टाइन में एकोमोडेट कम होगा और उससे टॉक्सिन्स हमारे कम बनेंगे। जितने हमारे फ्रूट्स, हमारे वेजिट, हमारे खाने में फाइबर्स होंगे, जितनी रिफाइंड चीज होती है उनको हमें अवॉइड करना चाहिए। रिफाइंड चीज यानी प्रोसेस फूड, जितने प्रोसेस फूड्स हैं, अगर आप प्रोसेस फूड्स में देखें तो जितने पैक्ड फूड होते हैं, टिन फूड है, पैक्ड है, उनमें प्रिजर्वेटिव होते हैं, जिसमें पैक्ड जूसेस होते हैं। कई बार हमें लगता है जूसेस हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छे हैं, लेकिन जो पैक्ड होते हैं उसमें प्रिजर्वेटिव है। फ्रेश जूस हमें लेना चाहिए लेकिन पैक्ड जूस हमें नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उसमें बहुत सारे प्रिजर्वेटिव होते हैं, पैक्ड फूड होते हैं। आप जो भी समझ सकते हैं जो पैक्ड फूड होते हैं वो हमें यूज नहीं करना चाहिए जब तक मजबूरी ना हो। अगर कहीं मजबूरी, हम ऐसी जगह है जहां पर हम कंज्यूम नहीं कर सकते, तो उस समय की बात है। लेकिन आजकल हम क्या करने लगे, रूटीन में उन पैक्ड फूडों को यूज करने लगे, तो पैक्ड फूड हमें नहीं लेना चाहिए। रिफाइंड चीजें जैसे रिफाइंड शुगर है, रिफाइंड साल्ट है, रिफाइंड ऑयल है, इनको हमें यूज नहीं करना चाहिए। जितना है हम सी साल्ट की जगह रॉक साल्ट यूज करें, हम शुगर की जगह जैगरी यूज करें, रिफाइंड तेल की जगह आजकल क्रूड प्रोसेस तेल आते हैं, फिजिकल प्रोसेस तेल आते हैं, कच्ची धानी के तेल आते हैं, हमें उनका यूज करना चाहिए। इनसे कैंसर की संभावना कम हो जाती है। फिर टोबैको, जैसे मैंने बताया, टोबैको सबसे हाईली टॉक्सिक ड्रग है। टोबैको के बारे में हम बात करें तो हमें शायद एक पूरा दिन भी लग जाए, इतने सारे टोबैको साइड इफेक्ट है। टोबैको की एक बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज है, टोबैको एक बहुत बड़ा फलता फूलता कारोबार है जिसमें कई लोगों की रोजगार जुड़े हुए हैं। मैं कई बार विलेजेस जाता हूँ, कैंप करने के लिए जाता हूँ, रूरल एरिया में हम लोगों के कैंप लगते हैं, तो देखते हैं वहां पे हमें फ्रेश वाटर नहीं मिलेगा, फ्रेश फूड नहीं मिलेगा, लेकिन जगह जगह पाउचों की लड़ियां मिल जाएंगी, हर दुकानों में कुछ ना कुछ ऐसा टोबैको की चीजें, गुटखा मिल जाएगी। तो क्योंकि उससे बहुत बड़ी इकोनॉमी जुड़ी हुई है, हमें अवेयर होने की जरूरत है। हम हेल्थ केयर वर्कर भी टोबैको का बहुत यूज करते हैं, बहुत सारे होते हैं, कई लोग प्रेशर में यूज करते हैं कि हम हॉस्टल में रहते हैं, जब हम कॉलेज के स्टूडेंट फेज में रहते हैं, मैं जब हॉस्टल में रहता था मेडिकल कॉलेज के, तो कई हमारे फ्रेंड्स यूज करते थे, उस समय थोड़ी सी रैकिंग की परंपरा थी। लेकिन अगर हम मेंटली साउंड है, मेंटली स्टेबल है, तो हम इन सब चीजों में कभी भी टच में नहीं आ सकते, क्योंकि हमें पता है कि ये हमारे शरीर के लिए बहुत हार्मफुल है। कई लोग अपने स्ट्रेस को भगाने के लिए यूज करते हैं, कई लोग सूडो स्ट्रेस को डेवलप करते हैं फिर उसको यूज करते हैं। तो वास्तव में स्ट्रेस को भगाने के लिए बहुत सारे तरीके हैं जो हमें यूज करना चाहिए, लेकिन ये टोबैको और एल्कोहल स्ट्रेस को भगाने का कोई जरिया नहीं है, ये केवल एक जहरीला प्रोडक्ट है, इसके अलावा कुछ नहीं। इसको हमें सेवन करने से कुछ नहीं मिलने वाला। टोबैको से सबसे पहले ओरल कैंसर होता है जो च्यूइंग करते हैं, टंग का कैंसर, बकल म्यूकोसा, बेस ऑफ टंग, लैरिंग्स, इसोफेगस, जब हम स्मोक करते हैं, लंग का कैंसर। शरीर का ऐसा कोई पार्ट नहीं है जो टोबैको से अफेक्टेड ना होता हो। कैंसर के अलावा तमाम प्रकार की बीमारियां आज टोबैको से हो रही है। एक मैंने एक स्टडी देखी थी, उसमें था टोबैकोनॉमिक्स, जितना टोबैको से होने वाली बीमारियों में सरकार खर्च करती है, अगर एक साल में उतना पैसा बचा लिया जाए तो हर गांव में पक्की सड़कें, हर गांव में, हर घर में शुद्ध पानी, हर घर में बिजली, हर बच्चे को फ्री एजुकेशन मिलती है, इतना टोबैको से होने वाली बीमारियों में गवर्नमेंट का पैसा खर्च हो सकता है, होता है। तो आप सोचिए उसकी भयभीता को समझे, टोबैको कितना भयानक चीज है। हम हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, हम हेल्थ में काम करते हैं, हमको पता है कि टोबैको को हमें यूज नहीं करना, लेकिन हमको ये नहीं पता टोबैको को कैसे हमें छोड़ना है। जब मैं कई लोगों से बात करता हूं तो बोलते हैं कि जब नौ देवियां आती हैं तो हम बिल्कुल यूज नहीं करते हैं, उसके बाद हम यूज करना चालू कर देते हैं। कई बार हमने रोका है, कई बार हमने मंथली एक महीने दो महीने नहीं यूज किया, हमें कुछ नहीं हुआ, हम डर सकती है लेकिन हम परमानेंट उसको नहीं यूज कर पाते हैं। लेकिन मैंने देखा, एक ब्रह्मा कुमारी की बहुत अच्छी स्टडीज हुई, उसमें ब्रह्मा कुमारी से कई साइकेट्रिस्ट और डॉक्टरों ने स्टडी की और देखा कि जो ब्रह्मा कुमारी का मेडिटेशन करते हैं वो विद इन अ वीक मंथ टोबैको को छोड़ देते हैं, और टोबैको इंक्लूडिंग बहुत सारे एडिक्शन को छोड़ देते हैं, और विड्रॉल सिम्टम भी बहुत मिनिमाइज होते हैं। तो मैं ये बताना चाहूंगा, मेडिटेशन एक इतनी अच्छी प्रोसेस है जिसको हम अपने जीवन में यूज करते हैं, जीवन में धारण करते हैं। तो पहली चीज, हमारी जो बिहेवियर इफेक्ट है, हमारी पर्सनालिटी, उसमें बहुत सारे चेंजेस आना चालू हो जाते हैं। जो हमारी पर्सनालिटी नेगेटिव है वो नेगेटिव से पॉजिटिव आना चालू हो जाती है, जो हमारे थॉट नेगेटिव है वो नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाते हैं, क्योंकि मेडिटेशन का मतलब है चैनलिंग ऑफ अवर थॉट, नेगेटिव टू पॉजिटिव, बेस्ट टू पर्पजफुल, लो टू पावरफुल। ये हमारे थॉट जब पावरफुल हो जाते हैं तो हमें एडिक्शन की बात ही नहीं होती है, क्योंकि मैंने देखा एडिक्शन इतना गंभीर होता है। मैंने देखा एक, मैं जब मैं राउंड पे जाता था, एक मेरा पेशेंट था वो बीड़ी पीता था और उसको लेरिंजियल कार्सिनोमा हुआ। लेरिंजियल कार्सिनोमा हुआ, उसने ट्रीटमेंट नहीं लिया, वो शुरू में आया मेरे पास, हमने समझाया भाई आप स्मोकिंग बंद कर दीजिए और ट्रीटमेंट लीजिए। जब उसको ऑब्स्ट्रक्शन हुआ, स्टेरॉइड डेवलप हुआ, सांस लेने में रुकावट हुई, उसको ट्रेकिस्टोमी करनी पड़ी और उसके घर वालों ने लाके हमारे वार्ड में एडमिट किया। कैंसर उसका एडवांस था, हमने कीमोथेरेपी चालू की उसकी और वार्ड में सुबह राउंड लेते थे। एक बार जब मैं वार्ड में राउंड लेने के लिए गया तो मुझे वो नहीं दिखाई दिया, तो मैंने पीजी से पूछा भाई ये कहां गया, तो सिस्टर ने बताया सर ये सुबह सुबह गैलरी बाहर चला जाता गैलरी में। तो मैंने देखा वो गैलरी में ट्रेकिस्टोमी साइड से स्मोकिंग कर रहा था। तो सोचिए, उसको पता है कि मुझे कैंसर भी डेवलप हो गया, एडवांस स्टेज में कैंसर है, मैं ज्यादा समय का मेहमान नहीं हूं, तब भी वो स्मोकिंग को नहीं रोक पाया। और मैंने ऐसे भी पेशेंट देखे कई मेरे पास, प्री मेलिग्नेंट कंडीशन के आते जिनको डर होता डॉक्टर साहब मुझे बक्कल म्यूकोसा में लिकोपिले किया है, वाइट पैसेज है, तो मैं उनसे जब डिस्कस करता हूं, क्योंकि इतना रस रहता है कि मुझे उतना तो समय नहीं रहता कि मैं लंबे समय तक काउंसलिंग करूं, मैं उनको बोलता हूं कि ऐसा करिए आप ये दवाइयां लीजिए और तंबाकू छोड़िए, और अगर छोड़ना चाहते हैं तो आप ब्रह्मा कुमारी आश्रम जाइए, आप ब्रह्मा कुमारी बहनों से मिलिए और राजयोग का अभ्यास कीजिए। मैंने देखा है 90% लोगों को मैंने देखा है कि अमूलचूक परिवर्तन हुए। जब वो मेरे पास एक महीने के बाद फॉलोअप में आए तो उन्होंने बोला कि हाँ मैं गया, मैंने 7 दिन का 10 दिन का वहां पे मेडिटेशन कोर्स किया और उसके बाद अब मुझे स्मोकिंग की इच्छा ही नहीं होती है, मेरी इच्छा ही खत्म हो गई है। मैं ऐसे सर्कल में रहता हूं, कई लोग बताते हैं कि मेरी जॉब ऐसी है कि मेरे सभी लोग टोबैको का सेवन करते हैं और मुझे देते हैं कि लो भाई तुम भी करो, जैसे वो सिगरेट स्मोकिंग करेंगे तो वो भी स्मोक करेंगे और फिर मुझे भी दे देंगे, ये एक परंपरा होती है उनके साथ में, जैसे वो गुटखा खाएंगे तो वो साथ में थोड़ा थोड़ा सबको दे देंगे। लेकिन मुझे इच्छा ही खत्म हो गई, मैं उनको बोलता हूं कि नहीं भैया मुझे नहीं करना, मुझे इच्छा नहीं, इच्छा मेरे मन से इच्छा खत्म हो गई। तो शायद जिसको हम केमिकल शिफ्ट भी बोलते हैं, तो मेडिटेशन से इतने अनुभव मुझे मिले हैं, मैंने पेशेंटों के ऊपर देखे हैं कि जिन्होंने एडिक्शन को छोड़ दिया। मेरे पास कुछ पेशेंट आते थे जो टोबैको के अलावा भी बहुत सारी ड्रग वो यूज करते थे और मुझे बोलते थे कि सर मुझे लगता है कि कुछ समय के बाद मैं कैंसर से पीड़ित हो जाऊंगा, जो आए दिन मैं न्यूज़पेपर में पढ़ता हूं, मैं छोड़ने की कोशिश बहुत करता हूं लेकिन मुझसे छूट नहीं रही, मैं क्या करूं, ऐसी कुछ मेरे को दवाई दीजिए। आजकल मार्केट में आप देखेंगे टोबैको की च्युइंगम भी आती है, बहुत सारी ऐसी रेमेडीज आती है, लेकिन मैंने देखा टोबैको की च्युइंगम भी यूज करते हैं, टोबैको की च्युइंगम में भी निकोटिन होती है, निकोटिन भी एक बहुत ज्यादा हार्मफुल प्रोडक्ट होता है। टोबैको को वास्तव में हम निकोटिन के रूप में ही यूज, निकोटिन के लिए यूज करते हैं, क्योंकि जो निकोटिन एडिक्शन करता है और ब्लड वेसल्स को डायलेट करता है। टोबैको का फंडा ये होता है ब्लड वेसल को डायलेट करता है, हमारी जब ब्रेन की ब्लड वेसल्स डायलेट होती है, ब्रेन में सप्लाई हमारी ज्यादा होती है और जो निकोटिन के रिसेप्टर्स होते हैं उससे एंडोर्फिन निकलना चालू होते हैं, ब्लड की सप्लाई ज्यादा होती है तो व्यक्ति को एक अच्छे फन की फीलिंग आती है, उसको वेलबींग की फीलिंग आती है, उसको लगता है कि हाँ अच्छा लग रहा। लेकिन फिर उस इफेक्ट को पाने के लिए वो निकोटिन की क्वांटिटी को बढ़ाता जाता है और धीरे धीरे फिर उसमें रेस्टेंट डेवलप हो जाता है और उसके बाद फिर वो अडेक्ट होता है उस अच्छे फन को, उस एक खुशी को, उस वेलबींग को पाने के लिए वो उसका सेवन ज्यादा करता जा रहा है और उसके गिरफ्त में चला जाता है। और मेडिटेशन भी वही काम करती है। जब मेडिटेशन करते हैं, मन को शांत करते हैं, तो ब्रेन की ऑटोमेटिकली ब्लड वेसल डायलेट होने लगती है और वो जो खुशी, जो आनंद, जो शांति की अनुभूति इन व्यसनों से होती है वो उसे खुद ही महसूस होना चालू हो जाती है। मेडिटेशन वास्तव में यही है। जो मेडिटेशन वर्ड निकला हुआ है, मेडिटेशन एक साइंटिफिक प्रोसेस है, जो वर्ड निकला हुआ है वो एक ग्रीक वर्ड है मेड्रिया। मेड्रिया से दो शब्द बने, मेडिसिन और मेडिटेशन। मेड्रिया का अर्थ होता है हील। मेडिसिन हमारे शरीर को हील करती है। सपोज हमें दर्द हुआ, हमने डाइक्लोफेनिक खाई और दर्द हमारा ठीक हो गया। हमारा फीवर हुआ, हमने पैरासिटामोल खाई, फीवर हमारा उतर गया। लेकिन जो मन के दर्द है, मन में आज जो डिप्रेशन है, मन में आज जो खुशी गायब हो गई, मन में जो नेगेटिव बातें भरी हुई है, उसकी साइंस है मेडिटेशन। हमें मेडिटेशन को आज अपनाना पड़ेगा। अगर मेडिटेशन और मेडिसिन दोनों को अपनाते हैं तो हमें रिजल्ट किसी भी चीज में बहुत अच्छे मिलते हैं। हमारा बिहेवियर चेंज हो जाता है, जो कैंसर का एक सबसे बड़ा कारण है। जो हमारी डाइट है, डाइटरी हैबिट हमारी चेंज हो जाती है, डाइट हमारी चेंज हो जाएगी, हमारा बिहेवियर चेंज हो जाएगा, तो कैंसर से हम बहुत ज्यादा बच सकते हैं। फिर तीसरा कारण जो WHO ने बताया, एक्सरसाइज या फिजिकल एक्टिविटी, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। आज क्या हो गया, आज हमारे पास साधन बहुत ज्यादा आ चुके हैं और साधना हमारी कम हो चुकी है। आज हमें कुछ भी करना है, हम दिन भर बैठे रहते हैं। आज हमारे पास इंडोर गेम्स है, आउटडोर गेम खत्म हो चुके हैं। बच्चों को भी ये आदत डाली जाती है कि इंडोर गेम, बच्चे भी शुरू से उसमें है। पहले मुझे याद था, हम छोटे थे, बाहर जाते थे, घंटों क्रिकेट खेलते थे, घंटों मैदान में बहुत सारे प्ले एक्टिविटी करते थे। लेकिन आज हम देखते हैं कि इंडोर एक्टिविटीज होती है। आज हमारे पास, पहले हम स्कूल पैदल जाते थे या साइकिल जाते थे, आज हमने गाड़ी उठाई, कार उठाए, चले गए, फिर ऑफिस में जाके फिर हम बैठ गए, या हॉस्पिटल में जाके फिर हम चेयर में बैठ गए घंटों तक, क्योंकि पेशेंट देखना है, ओपीडी बहुत लंबी होती है, घंटों तक हम चेयर में बैठ गए। फिजिकल एक्टिविटी आज हमारी बहुत कम हो गई। तो कोशिश करें फिजिकल एक्टिविटी को बढ़ाएं। हम मॉर्निंग में वॉक करें, मॉर्निंग में एक्सरसाइज करें। एक बहुत बड़ी स्टडी एक US में हुई है, उन्होंने ब्रेस्ट कैंसर के लिए देखा कि ऐसा क्या कारण है जिससे कि हम ब्रेस्ट कैंसर को प्रिवेंट करें। तो उन्होंने करीब करीब 10,000 to 15,000 लोगों के ऊपर एक स्टडी की और सिंपल सा उन्होंने देखा कि वॉक किया 30 to 40 मिनट, जब उन्होंने वॉक किया तो देखा 50% ब्रेस्ट कैंसर की संभावना महिलाओं में कम हो गई, केवल वॉक करने पर। एक छोटी चीज है। तो कहने का भाव यह है कि अगर हम फिजिकल एक्टिविटी अपनी बढ़ाते हैं, अगर आपके पास समय नहीं मिलता, आप मॉर्निंग में समय निकालिए, इवनिंग में समय निकालिए, थोड़ा सा आप एक्सरसाइज करिए। इंडोर एक्सरसाइज भी हो सकती है, आउटडोर एक्सरसाइज भी हो सकती है। एक्सरसाइज नहीं कर सकते, आप वॉक कर सकते हैं, सिंपल सी एक्टिविटी है, वॉक करें, एक्सरसाइज करें। या फिजिकल एक्टिविटी में हम अपने घर के ही काम करना चालू कर दें, जो हम ऑर्डर देते हैं। हम ऑर्डर देते हैं कि हमारे पानी का गिलास टेबल पर ही आना चाहिए, हमारे लिए काम टेबल पर ही होना चाहिए, जहां पर हम सिटिंग पोस्चर में उसी में होना चाहिए। हम कोशिश करें छोटी छोटी एक्टिविटी हम चालू करें, छोटे छोटे काम हम चालू करें, अपना ही काम चालू करें, दूसरों का काम चालू नहीं करें, उससे भी कैंसर की संभावना आपकी बहुत ज्यादा कम हो जाएगी। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, बिहेवियरल चीजें हैं, डाइटेड चीजें हैं, हमारी रूटीन की चीजें हैं, क्योंकि कैंसर भी एक लाइफस्टाइल डिसीज है। और कुछ कारण कैंसर के होते हैं जो इन्फेक्टिव डिसीज से होते हैं, ट्रांसमिट होते हैं, जैसे हेपेटाइटिस बी है, HPV वायरस है, वो भी अगर हमारा बिहेवियर पॉजिटिव है, लाइफस्टाइल डिसीज पॉजिटिव है, तो उनसे भी हम बहुत हद तक उनसे हम बच जाते हैं। तो मित्रों, आज हम इस कोरोना की महामारी में जूझ रहे हैं। कोरोना तो ठीक है, कोरोना चल रहा है, अगर हम पॉजिटिव रहते हैं, हमारी इम्यूनिटी अच्छी रहती है, तो कोरोना हमारे ऊपर इफेक्ट बहुत कम करेगा, क्योंकि हम ऐसी फील्ड में है जहां पर हमें पेशेंट के टच में रहना है और पेशेंट हमारी बातों से ज्यादा हमको देखता है, हमारी लाइफस्टाइल को देखता है, हमारे बिहेवियर को देखता है। अगर हमारा बिहेवियर पॉजिटिव होगा, आज मैंने देखा है बहुत सारे डॉक्टर को कैंसर हो रहा है, मैंने बहुत सारे कैंसर के डॉक्टर को कैंसर से मरता हुआ भी देखा है। क्योंकि बात करना एक अलग है, थ्योरिटिकल चीजों को पढ़ना एक अलग है, लेकिन उसको हमारे डे टू डे लाइफ में धारण करना अलग है। क्योंकि जो चीज हम धारण करते हैं, जो हमारे व्यवहार में होता है, उससे पेशेंट हमारा ज्यादा सीखता है। और जब हम ही स्वस्थ रहेंगे तो हम दूसरों को स्वस्थ कर सकते हैं, अगर हम बीमार हैं तो दूसरों को स्वस्थ नहीं कर सकते। दवाई भी जब काम करती है, जब हम दवाई के साथ में अपने वाइब्रेशन भी उस पेशेंट को देते हैं, उसको सिंपैथी देते हैं, उसको प्यार देते हैं, उसको शांति देते हैं, उसको सकारात्मक बातें बोलते हैं, तो दवाइयां भी बहुत ज्यादा पेशेंट को हील करती है, क्योंकि हीलिंग ड्रग्स के अलावा हमारे वाइब्रेशन भी पेशेंट के साथ में काम करते हैं। तो हमारे हेल्थ केयर वाइवर्स, मैं सभी को सलाह देना चाहूंगा, केवल जो 5 चीजें WHO ने रिकमेंड की हैं, साइंटिफिकली प्रूवन है, हम उनको अपने व्यवहार में डालें, कार्यशैली में डालें, तो शायद हम भी स्वस्थ रहेंगे, हमारा जीवन भी बहुत अच्छे से निकलेगा और जो हमारे पेशेंट हमारे संपर्क में आएंगे वो भी स्वस्थ रहेंगे। क्योंकि आजकल एक बड़ी प्रॉब्लम भी है, डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप, पेशेंट की अपेक्षा डॉक्टर से बहुत होती है, पेशेंट डॉक्टर को भगवान जैसा समझता है, लेकिन जब हम भगवान हो पाएंगे, हम उसकी इच्छा हो, जब हमारे अंदर भी पेशेंस होगा, हमारे अंदर भी पावर होगी, हमारे अंदर भी खुशी होगी, हमारे अंदर भी आनंद होगा, हमारे अंदर भी पॉजिटिवनेस होगी, जितनी अच्छी पॉजिटिविटी होगी उतनी अच्छे वाइब्रेशन हमारे से इमिट होंगे, और जो हमारा एक एम है, एक स्वस्थ संसार की निर्माण, वो निर्माण स्वयं से चालू होगा। जब हम स्वस्थ रहेंगे तो हमारा समाज भी स्वस्थ होगा, संसार भी स्वस्थ होगा, एक अच्छे सुखद हम संसार की कल्पना कर पाएंगे। ब्रह्मा कुमारी का यही लक्ष्य है, नर ऐसी करनी करे कि नारायण बन जाए और नारी ऐसी करनी करे कि लक्ष्मी बन जाए। तो हम इतने स्वस्थ हष्ट पुष्ट रहे, जो देवी देवता है जिनको देखते ही हमारा चेहरा खुश हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है, तो हम भी ऐसी बने कि पेशेंट आए और देखे तो आधी बीमारी उसको हमारे देखने से, हमारी बातों से दूर हो जाए। तो इन्हीं सब भावनाओं के साथ मैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। ओम शांति।
ओम शांति। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज एवं मेडिकल विंग, राजयोग एजुकेशन रिसर्च फाउंडेशन, RERF आपके लिए लेकर आए हैं राजयोग मेडिटेशन कोर्स। आइए इस अंतर मन की यात्रा में हमारे साथ जुड़ें। राजयोग मेडिटेशन कोर्स का आगामी सत्र सोमवार से गुरुवार, मंडे से थर्सडे शाम 7 बजे से 8 बजे तक मेडिकल विंग के फेसबुक पेज facebook.com/medicalwinghq/live व मेडिकल विंग के यूट्यूब चैनल youtube.com/dkmedicalwing/live ध्यान रहे इसका ऑनलाइन लाइव प्रसारण होगा। व्हाट्सएप 8619937031।